भाई नेविल, आपको आशीष मिले। प्रभु के भवन में आना सदा अच्छा है, परंतु बड़े दिन और नए साल और छुट्टी के दिनों में और अच्छा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए विशेष छोटी छोटी आशीषें रखी हैं। और जैसा कि हम, ये बहुत बुरा है कि हम इस बड़े दिन की भावना को सारे समय नहीं रख सकते। लोग आपकी ओर हाथ हिलाते और कह रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। ये अच्छा है। बड़े दिन के विषय में मैं इस बात को पसंद करता हूँ। अब मैं सुन रहा था कि मैं विश्वास करता हूँ कि अगले शनिवार रात्रि की गोष्ठी नहीं है। प्रभु चाहेगा तो मैं फिर यहाँ होने का यत्न करूँगा, रात्रि गोष्ठी में रहूँ। यदि प्रभु चाहेगा तो मैं समय दूंगा कि अगले शनिवार रात्रि में उनकी किसी विषय पर बोलने में सहायता करूँ। और रविवार प्रातः हमारा निरंतर संडे स्कूल है और रविवार रात्रि सुसमाचार की सेवा। अब प्रभु भोज, पैर धोना अगले रविवार रात्रि, ये ठीक है। नए वर्ष को आरंभ करने का अच्छा तरीका, ठीक है, प्रभु भोज लें और पैर धोएं। अब मैं ये उद्घोषणा करना चाहता हूँ, मैं ये छोटी समिति सभा करने का आग्रह कर रहा हूँ, उसमें जैसे केवल पास्टर और साथी पास्टर, आराधनालय के ट्रस्टी और डीकन इस आराधनालय के, मैं सोचता हूँ हमारे लिए कभी कभी एकत्र होना अच्छा है और मालूम करें कि प्रभु की हमारे लिए क्या अगुवाई है। और बहुत सी बार छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे वचन जो आप पाते हैं जो कठिन होंगे, और यदि हम नहीं होते, हम वही चाहते हैं कि एक ही बात बोलें हर कहीं, और हम एक साथ एकत्र होना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप पास्टर लोग और संगी, स्वभावतः भाई नेविल जो कि होंगे, और भाई डॉन रिडल यहां हैं हमारे एक साथी, और भाई ग्राम स्नेलिंग यूटिका में, भाई स्ट्राइकर यहां हमारे मिशनरी, और भाई लोग जो पास्टर हैं, भाई यहाँ दूसरे भाई परनेल, और आप जानते हैं यहाँ कौन कौन साथी हैं, भाई जूनियर जैक्सन वहाँ नीचे न्यू अल्बनी से, और फिर डीकन और ट्रस्टी। मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप करें। इस आने वाले सप्ताह एक छोटा कागज लें और उस पर विचार लिखें, या मैं कहूँगा वचनों को या कर्तव्य जो आपको करने हैं जो आप न जानते हो। जैसे कि एक ट्रस्टी कहेगा, यदि ये मामला उठता है तो मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है एक डीकन होने के नाते यदि ये मामला उठता है। और पास्टर कह सकता है, यहाँ इस वचन में देखता हूँ कि किसको कहाँ होना चाहिए, और मैं इसको नहीं समझता जिस तरह से हम इसे सिखाते हैं और इसे वचन में रखते हैं और आदि आदि। और इन सबको भाई वुड को दे दें यदि आप चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे बगल में रहते हैं, और जैसे ही आप जितनी जल्द आप लिख सकते हैं मैं इसकी सराहना करूंगा, ताकि मैं इसे वचनों में देखूंगा। और हम ये ले लेंगे। अब ये आम सभा नहीं थी, ये केवल पास्टरों के लिए है, और इस आराधनालय की और आराधनालय के डीकन और ट्रस्टी, और जैसे ही हम उन्हें ले सकेंगे हम सीधे आएंगे, तब उस रात्रि के लिए घोषणा कर देंगे कि यहाँ कोई सभा नहीं है, और फिर हम उसके विषय में सोचेंगे। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी बात होगी भाई नेविल और भाई लोग और आप सारे पास्टर आदि आदि, ताकि हम एक साथ एकत्र हो सकें। इस प्रकार से हम हर स्थान पर एक ही बात बोल सकते हैं, हम जानते हैं। और फिर इसको टेप भी किया जा सकेगा, हमारे प्रश्न उत्तर टेप किए जाएंगे, और हम में से प्रत्येक ले सकेगा, ताकि आप उसे चलाकर जान सकेंगे यदि कोई प्रश्न उठता है जो कि कलीसिया के लिए लाभदायक हो सकता है। या कोई कहेगा, भाई ये हम वापस टेप पर देखेंगे कि टेप पर क्या है, ये कहा है, और हमारे पास इस प्रकार के टेप पहले ही हैं। और मैं सोचता हूँ इस वर्ष हमारे पास नए ट्रस्टी हैं और कुछ नए डीकन और आदि आदि, और हम उन्हें आदेश देना चाहते हैं। और ये छोटा भाई, ये सेल्सबर्ग से हमारा एक भाई है, भाई विलर्ड क्रेस, यदि आप इन्हें ये संदेश भिजवा सकेंगे, क्योंकि वो अभी प्रभु में नया नया है। और यदि नवयुवक लोग, मैं सोचता हूँ, स्थिर हो जाएं, आप देखिए मेरा क्या अर्थ है, जान जाएं कि कैसे बने रहें, और उनके मस्तिष्क में छोटे छोटे प्रश्न आएं, बजाय इसके कि किसी अलग राह पर चले जाएं, हम एकत्र होकर और देखें कि ये कुल मिलाकर क्या है। तब जब हमारी सभाएं, हमारा महान संयुक्त सभाएं जब कलीसियाएं एकत्र हों, जैसे कि हम पिछले सत्र में, तब हम जानेंगे कि क्या लें और क्या कहें, क्या करें। हम सब एक ही भाषा बोलना चाहते हैं ताकि हम समझ सकेंगे। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि भाई नेविल ने भली प्रकार से कहा है कि इस क्रिस्त जयंती के उतार चढ़ाव में, इस समय की संगति में, छुट्टियों के आसपास हम शुभकामनाएं देते हैं और आदि आदि। और फिर मैं इस समय को प्रत्येक को प्रकट करने के लिए लेना चाहता हूं। आप में से प्रत्येक का मैं कितना आभारी हूं, आपके बड़े दिन के कार्ड और चीजें जो हमने अपने घर पर प्राप्त करी। निश्चय ही मैं अपने सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। निश्चय ही इस प्रातः इसने हमारी भलाई की है। जब मेरे पास एक छोटा लड़का है, इतना छोटा, फिर भी एक प्रकार का क्रिसमस ट्री चाहता है, और ये हमारे पास कमरे में है, और प्रातः वहाँ नीचे जाकर अपनी कलीसिया से बहुत सारे इनाम पाए जो मेरे मित्रों ने आसपास से विभिन्न स्थानों से आकर जो भीतर आए पेड़ के नीचे रखे। और मेरे पास शब्द नहीं है कि आप पर प्रकट करूं कि मैं उनमें से प्रत्येक की कितनी सराहना करता हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है। और हमें आप जानते हैं कि हम उपहार वापस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इतने पैसे का प्रबंध नहीं कर सकूंगा। आप जानते हैं मैं $100 प्रति सप्ताह कमाता हूं, और मेरे पास बड़ा परिवार है और लगभग 1 करोड़ मित्र। निश्चय ही सबके पास होना कठिन है उनसे मिलने को, परंतु हम आपके आभारी हैं और आपके विचार, और मैं निश्चित हूं कि आप समझते हैं। अब इसे न भूलें, इस आने वाली नए वर्ष की रात्रि। ओह, मुझे पहली रात्रि मंडली स्मरण है जो कि कभी यहाँ इस आराधनालय में थी। मैं अनुमान नहीं लगाता कि यहाँ कोई है जिसे वो स्मरण है, परंतु वो एक रात्रि थी कि प्रभु ने आपके पास्टरों में से बहुत सारी अकड़ निकाली थी। तब फिर हम एक महान समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब थोड़ी प्रार्थना करने से पहले मैं आज रात्रि पवित्र वचन का पाठ पढ़ना चाहता हूँ। और आज रात्रि मैं स्वयं में अपने से वाद विवाद कर रहा था। मैंने उद्घोषणा की है कि मैं आज रात्रि बोलने पर था, यदि मैं यहाँ पर हुआ। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। इस प्रकार की आवाज मेरे लिए जानी पहचानी है, और हमारे भले मित्र भाई सॉथमैन यहाँ कलीसिया के ट्रस्टियों में से एक हैं। मैं उनसे पूछ रहा था और उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे पास इसका टेप है, आपने ये कहीं प्रचार किया है? और हमारा अमूल्य मित्र भाई लियो मर्सरिया, जो टेप करने वाला लड़का है, कहा, जी हाँ, लगभग 5 बार। इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बदला है, बजाय इसके हमने उसका सितारा पूर्व में देखा है, मैं आज रात्रि परमेश्वर का लिपटा हुआ उपहार इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। और अब मैं संत मत्ती के सुसमाचार में से पढ़ने जा रहा हूँ, दूसरा अध्याय पवित्र वचन से पढ़ने के लिए। संत मत्ती का दूसरा अध्याय। हेरोदेश राजा के दिनों में, जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंदरस की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। अब आज रात्रि मैं यहाँ से मूल पाठ लेना चाहता हूँ, या यहाँ से नहीं परंतु इसी कथा से, संत लूका 2:7 से। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हम प्रार्थना करने के लिए अपने सिरों को झुकाएं।
होली एंड ग्रेशियस गॉड,
पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिसने हमें सबसे महान उपहार दिया कि ये संसार कभी प्रभु यीशु मसीह को जाने, हम आज रात्रि नम्रता के साथ तेरे पास आते हैं धन्यवाद में होते हुए और अपने अंतर आत्मा के प्रकटीकरण के साथ हृदय की गहराई श्रद्धा के साथ तुझे इस शानदार उपहार के लिए। हमारे पास वापसी में देने के लिए कुछ नहीं है और ये बहुत ही थोड़ा था जो आपने मांगा, बस तुम जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ को ले लूंगा और तुम्हारे पापों को और तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। ओह क्या ही बदला है हमारे पिता, सिवाय आपके ये और कोई नहीं कर सकता और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये हमारे लिए किया है और इस घड़ी में हम आपके गवाह हैं कि आपने हमारे बोझ और पापों को ले लिया है और बदले में हमें आनंद और शांति दी है। हम इसके लिए कितने धन्यवादित हैं प्रभु। ये भीतरी मसीही अनुभव हमारे हृदयों में बड़ा दिन, हम इसके लिए बहुत प्रसन्न हैं। ये जानकर बहुत आनंदित हैं कि हम अंत के दिन में रह रहे हैं जबकि चिन्ह फिर से उस दिन के समान आ रहे हैं उसके आने के। हम तेरी उपस्थिति में अपने हृदय को नम्र करते हैं। ओ महान राजसी, तेरा आत्मा हमारे हृदयों में हमारे जीवनों में सर्वोच्च राज्य करे और हमें भीतर से बाहर की ओर सामर्थी बनाए ताकि हम इस महान अंधेरी घड़ी में तेरे दास हो सकें जो कि संसार इसका सामना कर रहा है। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने को हम तेरे सम्मुख उपस्थित करते हैं ताकि इसमें से पवित्र आत्मा कुल मिलाकर हमारे लिए मूल पाठ लाए जो आज रात्रि बड़े दिन के संदेश के लिए तेरे लोगों को पर्याप्त हो जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
Lord, circumcise the lips that will speak and the ears that will hear and empower and put life.
प्रभु बोलने वाले होठों का खतना करें और सुनने वाले कानों का और वचनों में जो निकलते हैं सामर्थ और जीवन भरें ताकि ये हम प्रभु यीशु के और अच्छे ज्ञान तक ले आए क्योंकि हम ये उसके नाम से मांगते हैं। आमीन। यहाँ उल्लेख के लिए बहुत से वचन लिख रहे हैं और आदि आदि। कल जैसे ही मैंने सुना मुझे आश्चर्य हुआ, अखबार उठाया जहाँ ये व्यावसायिक संसार कहलाता है बड़े दिन का उछाल या बम्पर, जहाँ इस समय अधिक पैसा खर्चा किया जाएगा जो कि कभी वर्षों में खर्च किया गया होगा पिछले बहुत वर्षों में।
And at the crowds that gathered into Jerusalem, and how that there was a little peace time.
और वो भीड़ यरूशलम में जमा हुई थी और कैसा ये शांति का समय अरबों और यहूदियों के बीच में था। एक प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा रखा कि इस समय में तीर्थयात्री बड़े दिन के फिर से नगर में आएं।
I've often wondered
मुझे अक्सर आश्चर्य होता कि ये बैतलहम क्यों कभी चुना गया। जैसा कि उन लोगों ने थोड़ी देर पहले एक गाना गाया, वो व्यक्ति और उसकी पत्नी और बालक और उस छोटी लड़की को देखते हुए आश्चर्य हो रहा था किस प्रकार से वो समय इस प्रकार से वीणा के तारों से बंधी हुई थी जो कि वो बजा रही थी, और कैसे वो छोटा जो अभी बालक ही था परंतु फिर भी समय ताल से था, या इस वीणा से मैं समझता हूँ इसे वीणा कहते हैं। अब और फिर मैं बैतलहम के विषय में सोच रहा था और ये क्यों हुआ कि इसे राजाओं के राजा के जन्म स्थान के लिए चुना गया। और आप जानते हैं कि बैतलहम एक छोटा सा नगर है। मुझे अक्सर आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने क्यों नहीं इसके लिए अधिक धार्मिक स्थान को नहीं चुना इस महान घटना के लिए, जैसे कि शीलो। शीलो वो पहला स्थान था जहां तंबू, वो वाचा का संदूक यर्दन पार करने के बाद रखा गया था। गिलगाल दूसरा महान धार्मिक नगर, सय्योन पहाड़ पर दूसरा महान धार्मिक नगर, या यहाँ तक कि महान राजधानी यरूशलम जो युगों से होते हुए महात्माओं संतों के साथ, क्यों नहीं परमेश्वर ने यरूशलम को चुना, उसने क्यों बैतलहम को चुना। ऐसा लग सकता है कि उसे कोई स्थान चुनना था, शरण का महान स्थान जो उसके पुत्र की सुरक्षा कर सकता होगा यदि कोई संकट आता। शरण स्थलों में से जैसे रमोत गिलाद, ये महान शरण स्थल जो भागे हुए लोगों के लिए बनाया गया, इन मीनारों में भाग सकते थे। एक और महान शरण स्थान कादेश था। हेब्रोन दूसरा महान शरण का नगर था। क्यों परमेश्वर ने छोटे बैतलहम को लिया और फिर इन महान नगरों को नहीं चुना, और उनके महान नाम थे और अधिक आत्मिक पृष्ठभूमि थी। परंतु आप जानते हैं परमेश्वर का कार्य करने की एक शैली होती है चीजों के विषय में, उसका अपना ढंग। मैं आनंदित हूँ कि वो करता है, समझे। कभी कभी वो उन चीजों को लेता है जिनकी कोई आत्मिक पृष्ठभूमि नहीं होती, या बिल्कुल कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, और इसलिए वो परमेश्वर है। वो ऐसी चीज को ले सकता है और जो कुछ नहीं है, और उसमें से कुछ बना सकता है, और यही है जो उसे परमेश्वर बनाता है। यही है जिसने हमसे प्रेम किया, यही है जिससे हम बेचारे लोग उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि यद्यपि हम बेचारे बिना किसी पृष्ठभूमि के, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ महान कार्य कर सकता है यदि वो कभी हमें अपने नियंत्रण में ले। निसंदेह यहोशू वो था जो इसराइल के बालकों को ले गया और भूमि का बंटवारा किया। और इस यहूदा के गोत्र को ये भाग दिया गया जहाँ बैतलहम है, जो कि यहूदा के प्रदेश में ऊपर उत्तरी कोने में है, एक छोटी तिकोनी पट्टी के समान। और इस स्थान में, इस प्रदेश में, ये महान प्रदेश, ये उत्तरी गेहूं का स्थान, जहाँ गेहूं की पट्टी थी, जहाँ वे बहुतायत से गेहूं और जौ उगाते हैं। और कालेब के एक लड़के ने इस नगर की नींव रखी।
सलाम,
उसका नाम सलेम था। वो कालेब का एक पुत्र था। यदि आप ये देखना चाहते हैं, मैं बहुत सारे वचनों को छोड़ रहा हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग इन्हें लिख रहे हैं। पहले इतिहास में 2:15, मती 1:5, और जहाँ उन्होंने वो रहा और महानगर की स्थापना की, जो कि छोटा नगर था, परंतु ये महान है क्योंकि इस नगर में महान बातें घटित हुई। जैसे कि मैंने सदा कहा है, ये महान कलीसिया नहीं है, ये महान परमेश्वर कलीसिया में है। क्या ये महान नहीं? पवित्र पर्वत, ये महान पवित्र आत्मा पर्वत पर था। ये पवित्र व्यक्ति नहीं, ये पवित्र आत्मा मनुष्य में। इस प्रकार का ये नगर था, ये आकार में छोटा था और अधिक घाटी में और अधिक देखने में कुछ नहीं। इसकी जनसंख्या थोड़ी थी और आज भी वैसे ही, परंतु क्योंकि परमेश्वर इसमें कुछ करने के लिए इसे चुना था, मैं इसको पसंद करता हूँ। कुछ जो परमेश्वर चुनता है, कोई मतलब नहीं ये कैसा दिखता है लोगों को, जब तक परमेश्वर इसे चुने रहता है। राहब वेश्या, जिससे हम सब परिचित हैं, वो एक युवा स्त्री होने के नाते जो कि मूर्ति पूजक पिता माता द्वारा गलियों में छोड़ दी गई थी और उसे गलियों में भेजा गया था क्योंकि वो सुंदर थी और उन्हें वेश्यावृत्ति से कमाकर देना था। और फिर भी इस चरित्रहीन लड़की में कुछ था जो सड़कों पर छोड़ी गई थी। उसने सुना था कि परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उसे परमेश्वर को स्वीकारने का पहला सौभाग्य मिला था उसके लिए कुछ करे। उसने ये किया, परमेश्वर ने उसका जीवन बचा लिया और उसके पिता माता को बचा लिया और उसके परिवार को। वो इसराइल की सेना के सेनापति से प्रेम करने लगी, हम ये इतिहास में पढ़ते हैं, और इस सेनापति से विवाह किया और उसका प्रणय निवेदन बहुत ही अच्छा था और अंत में वे बैतलहम में बस गए और वहीं रहे। और इस सेनापति के द्वारा वो संसार में एक पुत्र को लाई। पुत्र, मैं इस समय सेनापति के नाम को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, सोचा उसका मैंने यहाँ पर लिखा है परंतु नहीं, मेरे पास उसके पुत्र का नाम है परंतु ये राहाब का पुत्र था। इस सेनापति को उसका नाम सलमोन था, न कि सालोमन जिसने मंदिर बनवाया, दाऊद का पुत्र, परंतु दूसरा सलमोन। और इस सलमोन से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम बोआज था। बोआज, हम सब बोआज और रूथ की शानदार कहानी से परिचित हैं। अब आप देखिए, ये वेश्या अन्य जाति थी और ये हमारे प्रभु यीशु की पूर्वज दादी थी। और तब भी जब बोआज उसका पोता आया और मुआवी रूथ से विवाह किया, उसने भी अन्य जाति में विवाह किया, जिससे कि यीशु अन्य जाति का भाग बना संसारिक रीति में। और जब उनके बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम ओबेद था, और ओबेद के एक पुत्र था उसका नाम यश्शी था, और यश्शी के एक पुत्र था जिसका नाम दाऊद था। ये सब इस छोटे बैतलहम में घटित हुआ। ये क्या है? प्रभु यीशु का वंश, उसकी पृष्ठभूमि, वे महान आत्मिक मनुष्य अनदेखा कर रहे थे या केवल आत्मिक पुरुष कहलाए। और ये वही भूमि थी जहाँ सैमुएल नबी ने दाऊद का अभिषेक इसराइल का राजा होने के लिए किया, ठीक यही बैतलहम में। और दाऊद के द्वारा महान पुत्र आया। तू दाऊद का पुत्र है, पुत्र जो कि पहाड़ की एक ओर गौशाला में जन्मा, नगर के पश्चिम की ओर। ये वही था वो पहाड़ जहाँ परमेश्वर के सरदूतों ने पहला मसीह के जन्म का गाना गाया। इस शब्द बैतलहम को हम तोड़े, बैत का अर्थ घर, एल का अर्थ परमेश्वर, ए एल हा म का अर्थ रोटी, परमेश्वर की रोटी का घर। जीवन की रोटी बैतलहम से आ रही है, तो तब के लिए ये कितना उपयुक्त है, परमेश्वर की रोटी का घर। ओह, ये सुंदर कहानी है। ये थोड़ा अंधकार के पश्चात होना चाहिए और सूर्य अस्त हो चुका था, संभवतः सितारे निकल आए थे और लगभग दो घंटों से उजियाला जा चुका था। जैसे कि छोटा गधा अपने छोटे थके पैरों को पहाड़ की अलंग पर रख रहा था बैतलहम के पश्चिम में, जैसे कि उसने देखा कि उसने अपने छोटे खुरों को कहाँ रखा है, क्योंकि उसका सामान बहुमूल्य था। और यूसुफ उसे आराम से ले जा रहा था, जैसे कि तीनों ने पहाड़ से चलना आरंभ किया, सारे दिन यात्रा की होगी, नासरत से आ रहे थे। और वो किसी भी समय माँ बनने वाली थी, संभव है समय निकल गया हो, परंतु सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा पहले से ही ठहरी हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए कुल मिलाकर भलाई उत्पन्न होती है। ये परमेश्वर से ठहराया हुआ था, उन दिनों में निर्दयी राजा होना चाहिए। हेरोदेस लहू का प्यासा, इस विषय में परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कर के विषय में जानता था और कैसे ये निर्दयी सरकार के विचार में बेचारी माताओं के लिए जो पहलौठा पुत्र जनने को थी कुछ नहीं था कुछ ही दिनों में, परंतु उसने ये आज्ञा दी कि हर कोई अपने जन्म स्थान को जाए और करों का भुगतान करे। कोई मतलब नहीं कि वो किस दशा में है, जो भी है उसे आना है। परमेश्वर ये सब जानता था, वो पहले से सब बातें जानता है और सब बातें जानता है, देखिए, और वो कुल मिलाकर भलाई निकालता है। और ये तीनों इस विषय में कोई विवाद नहीं करते, जबकि वे पहाड़ पर आते हैं। काफी सहने के बाद छोटा गधा, मैं उन्हें देख सकता हूँ जैसे कि वे पहाड़ की चोटी पर रुकते हैं, जहाँ वे पश्चिम की ओर से आए हैं, नासरत से आ रहे हैं, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद वे नीचे घाटी में देखते हैं जहाँ छोटा बैतलहम था। बहुत सी मशालें जल रही थी, बहुत सारे लोग समस्त गलील से जमा हुए थे कि वहाँ बैतलहम में अपने जन्म स्थान में आए और प्रदेश से होते हुए रोम सरकार को कर भुगतान करें। कोई मतलब नहीं कि क्या दर्शाएं, या वे सड़क पर बिखरे हुए थे, बीमार आवश्यकता में खाट पर पड़े हुए थे, कोड़ी कैंसर वाले, निर्धन लंगड़े पड़े हुए, अंधे, सबको आना था क्योंकि ये सरकारी आदेश था और हेरोदेस इसके पक्ष में था और ये हो जाना चाहिए। और जैसा कि हमारा छोटा झुंड पहाड़ की चोटी पर रुका, वहाँ एक बड़ी चट्टान होनी चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि यूसुफ ने उसे धीरे से अपने हाथों में पकड़कर उठाया और गधे पर से उतरने में उसकी सहायता की और उसे चट्टान की अलंग पर बैठा दिया, और छोटे गधे ने सांस के लिए मुंह खोला और जमाई ली, और यूसुफ कुछ कदम आगे बढ़ा और बैतलहम को देखा और गलियों की भीड़ से भरा हुआ देखा, और शोरगुल, सड़कों पर मशालें जल रही थी, लोगों की चिल्लाहट, और वे मैदानों और आंगनों में पड़े हुए थे और नगर के फाटकों के बाहर। ऐसा कुछ दृश्य होना चाहिए। यूसुफ को कुछ ऐसा ही कहना चाहिए, प्रिय मरियम, जरा सोचो, उत्तर की ओर नगर के पार, वहीं जहां मुआबनी रूस सामने बोआस के खेतों में सिला बीना, वहां उस पार, वहां सामने पहाड़ पर जहां दाऊद ने अपनी गोफन से सिंह को भूमि पर गिरा दिया और उसके मुंह से भेड़ को छीन लिया, वही होना चाहिए, यहीं जहां यहोशू अपनी चमकदार तलवार के साथ खड़ा हुआ, हमारे लोगों का निडर योद्धा, और भूमि को बांट दिया और ये वारिसाना अधिकार यहूदा के गोत्र को दिया, जिस प्रिय के हम वंशज हैं। और भिन्न बातों से वो कैसे उसको विवरण दे रहा होगा कि क्या क्या घटित हुआ, और फिर अपने पीछे से कोई आवाज ना सुनकर वो देखने को पीछे घूमा होगा कि देखे वो अब भी चट्टान पर बैठी है, और जब वो घूमा उसने उसका सुंदर मुंह आकाश की ओर घूमा हुआ देखा। उसे और कुछ नहीं पूछना था क्योंकि सितारे की चमक उसकी आंखों से आ रही थी, वो जान गया कि वो किसी चीज को देख रही है। उसने उसकी ओर देखा और कहा, यूसुफ, क्या आपने ध्यान दिया वो सामने सितारा है? और जब उसने देखा और आश्चर्यचकित होकर कहता है, तो ये मैंने इसके पहले ध्यान नहीं दिया, जब से सूर्य अस्त हुआ है ये तभी से हमारे पीछे चल रहा है, मैंने इस पर ध्यान दिया है। इसका कोई अर्थ होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अद्भुत अनुभव कर रही हूँ। आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों के लिए ऐसी चीजें करता है हमें ज्योति दिखाता है या किसी और तरह से, ताकि हम जान सकें कि वो पास है और दृश्य में है। कोई मतलब नहीं संसार क्या कहता है या करता है, वो अब भी वही है और हर चीज ठीक हो जाएगी। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा पहले इसकी गवाही दी है ताकि हम इसको अनुभव कर सकें। और यूसुफ को कुछ इस प्रकार कहना चाहिए, मरियम तुम क्या जानती हो, मैं अपने जीवन में इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ जब मैं रोमी सरकार के द्वारा भगाया गया, परंतु फिर भी मैं इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ जैसे कि अभी हूँ, और मैं नहीं जानता क्यों। ऐसा प्रतीत होता है कि आज रात्रि इस छोटे नगर पर पवित्रता ही है, जहाँ हम लड़के और लड़कियाँ थे, हम घूमे अपने युवा स्कूल पढ़ने की आयु में, उधर पूर्व में वहाँ से बहुत मीलों दूर ज्योति अपने मार्ग पर थे। उन्होंने उसका तारा देखा था और परमेश्वर के छोटे उपहार की आराधना करने को आ रहे थे जिसको वो संसार में भेज रहा था। उसके थोड़े समय पश्चात और संसार अपना सबसे बड़ा उपहार जो उसने कभी पाया पाने जा रहा था, लिपटा हुआ एक छोटा बंडल, एक छोटा पहला बड़े दिन का पुलंदा जो कभी समस्त संसार में बांधा गया, परमेश्वर ने इसे लपेटा। मैं अपने विचार को तोड़ना चाहता हूँ और ये कहता हूँ, महानतम चीज जो कभी मानव देह में लपेटी गई, वो इसमें लिपटी थी। परमेश्वर ने स्वयं को बड़े दिन के इस गठरी में लपेट लिया और इसे संसार में भेज दिया। उन्होंने क्यों इसे अस्वीकार किया, वे क्यों नहीं इसे देख सके, उन्होंने क्यों इसे त्याग दिया, क्यों उन्होंने इसे नहीं चाहा? उसी कारण से वे आज रात्रि इसे नहीं चाहते। इन्हें ये रीति रिवाजों में नहीं दिया गया जिसमें उन्हें उपहार मिला करते थे। यही कारण है कि वो आज रात्रि भी अस्वीकार्य है, क्योंकि ये रीति रिवाजों के अनुसार लोगों को नहीं दिया गया जैसे वे उपहार लेने के आदि हैं। परमेश्वर ने स्वयं अपनी गठरी बांधी, उसे ये करने का अधिकार है, वही है जो ये दे रहा है। उसे अधिकार है कि वो उसे किस प्रकार भी लपेटे, वो इसे लपेटना चाहता है। कोई अंतर नहीं पड़ता ये कैसा है, उसने ये करने का अधिकार है क्योंकि ये वो जो उपहार दे रहा है। दूसरी बात, इसका कारण ये था, जैसे ये सब था वैसे ही ये उनके लिए इस प्रकार से प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं था जैसे कि लपेटा गया था। वे कुछ और आशा कर रहे थे कि एक उपहार आ रहा है जो कि रथ में होकर आएगा, अग्नि में घोड़े स्वर्गदूतों से घिरे हुए। परंतु जब वो एक बालक के समान चरनी में जन्म लेकर आता है, पवित्र वचन जिसने कहा थोड़ा कभी कभी जानते हैं, मैं संसार को अलौकिक चिन्ह दूंगा। एक दिन उन्होंने चिन्ह मांगा, उसने कहा मैं ये तुम्हें दूंगा, ये सर्वोत्तम चिन्ह होगा, ये चिन्ह सारे युगों का चिन्ह होगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और बालक जनेगी, एक पुत्र, वे उसका नाम इमैनुएल पुकारेंगे। ये सर्वोत्तम चिन्ह है, ये ही उपहार मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। परंतु ये उनकी आशा के अनुसार नहीं आया और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मेरे भाइयों, आज रात्रि भी ऐसा ही है। परमेश्वर का उपहार वैसे नहीं आया जिस प्रकार लोग चाहते थे कि आए, और इसलिए उन्होंने इसे ठुकरा दिया, वे इसे नहीं चाहते। वे उसे उसी चीज में लपेटना चाहते हैं जिसमें वे लपेटना चाहते हैं। वे इस पर चमकीला कागज चाहते हैं, वे कुछ फूलों वाला चाहते हैं जो खुशबूदार हो, कुछ भड़कीला जो अनोखा हो। परंतु परमेश्वर इसे हर समय इस प्रकार नहीं भेजता, वो इसे सामर्थ्य में भेजता है जिस प्रकार वो इसे भेजना चाहता है।
It was brought by the poor.
दूसरी बात, ये निर्धनों के द्वारा लाया गया मरियम और मार्था, मार्था बल्कि यानी मरियम और यूसुफ बहुत निर्धन थे, वे देहाती थे, क्योंकि ये निर्धनों के द्वारा लाया गया उन्होंने इसे नहीं चाहा। ऐसा ही आज है जब कलीसिया का ये महान उपहार पवित्र आत्मा निर्धन नम्र लोगों पर उतरा। धनी इसे नहीं चाहते, वे स्वयं को दीन करना नहीं चाहते, वे इसे वर्ग के साथ चाहते हैं, परंतु वे जिस प्रकार परमेश्वर ने इसे भेजा है वैसा नहीं चाहते। बहुत से लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे वैसे ही चाहते हैं जैसा वे चाहते हैं, परंतु ओ मैं बहुत आनंदित हूँ कि आप उस प्रकार नहीं कर सकते। आपको वैसे ही करना है जैसा परमेश्वर ने इसे आपके पास भेजा है, और इसे स्वीकार करने के लिए स्वयं को नम्र करें। ये बढ़िया कपड़े में लिपटा हुआ नहीं है, ये जानवरों वाले कपड़े में लिपटा हुआ है, जो कि मुझे सिखाया गया है कि वो चीज जिसमें यीशु लिपटा था मसीह, जो चीज बैल के जुए पर होता है, चरनी में टंगा था, वो जानवर के ऊपर डालने वाला जो कपड़ा था उसमें लिपटा था। वे इसे कहाँ डालते हैं? गुदड़ी जो बैल की गर्दन के चारों ओर कि उसे रगड़ से बचाए कि छाला ना पड़ जाए जब वो इसे खींच रहा है। उनके पास उसके लिए कपड़ा नहीं था, और वे ओ जब मैं इसे सोचता हूँ ये लगभग मेरा हृदय तोड़ देता है। इमैनुएल के लिए कोई कपड़ा नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, और उसे उड़ाने के लिए कोई कपड़ा नहीं, और उसे चिथड़े में लपेटना था जिसको बैल गर्दन पर लगाता है। ओ क्या ही सर्वोत्तम चिन्ह है, लोगों के लिए तो इसे आकर्षक होना चाहिए। छोटा सा यहोवा बालक के समान रो रहा है, परमेश्वर एक गठरी में देहधारी हुआ, परमेश्वर जो कि समस्त अंतरिक्ष और समय को ढांके रखता है, और वो जो संसार से पहले था या एक सितारा या अणु, स्वयं को छोटी सी गठरी में लपेट लिया और चरनी में लेट गया। एक गौशाला जहाँ पशुओं और भेड़ों का गोबर और आदि आदि, वहाँ उस गौशाले में और इस छोटी चरनी में भूसा था, पुआल पर वहाँ यहोवा पड़ा है बालक के समान रो रहा है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? क्यों धनी इस प्रकार की चीजें पसंद नहीं करते? ये उनके अपने विचारों को दूषित कर देगा। कोई चीज इतनी नम्र, और एक लड़की के द्वारा लाया जाएगा, एक साधारण देहाती लड़की जिसे उसके पड़ोसी में धर्मांध समझा जाता है, एक बड़ाई के द्वारा जो संभवतः अपना कह कह गए जानता हो। वे कैसे कभी कोई चीज ला सकते थे जो तरसाने वाली या त्योहार पर आंखों को संतुष्ट करने वाली हो? वे कभी कैसे ऐसी कुछ चीज उत्पन्न कर सकते थे जो प्रसन्न या धनी को संतुष्ट करे, घमंडी लोगों को या उनके दिनों के नामधारियों को? उन्होंने सीधे सीधे अस्वीकार कर दिया। केवल उसी दिन में नहीं, परंतु आज के दिन में भी उन्होंने साफ साफ अस्वीकार कर दिया। ये उस प्रकार से लिपट कर नहीं आया जैसा वे इसे चाहते थे, वे इसे छोड़ देना चाहते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं। इसलिए धनी और नामधारियों ने उपहार को मना कर दिया, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों वे इस प्रकार की बातें क्यों करेंगे? ये उनके रिवाजों और धार्मिक मतों में लिपटा हुआ नहीं है। यही कारण है क्यों आज तक कि वे परमेश्वर का उपहार नहीं चाहते। ये संयुक्त राज्य परमेश्वर को नहीं चाहता, ये कलीसियाएं परमेश्वर को नहीं चाहती, वे सेंटा क्लॉस को चाहते हैं, वे कुछ चमकदार और लाल रंगों में चाहते हैं और चमकीली भड़कीली चीज। उन्होंने सुसमाचार के सत्य का इनकार कर दिया, उसकी सामर्थ और मसीह यीशु के पुनरुत्थान का। ये उनके मतसार में नहीं लिपटेगा। आप मसीह को मतसार में नहीं लपेट सकते। इस प्रातः जब मैं माँ के पास जल्दी जा रहा था तो रेडियो चलाया और एक कलीसिया उल्लेख या कह रही थी जो कि प्रेरितों का मतसार कहलाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रेरितों का एक ही मतसार जो कभी रहा वो प्रेरित 2:38 में मिलता है, तुम में से हर एक प्रत्येक प्रायश्चित करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। केवल यही मतसार जो मैंने कभी बाइबल में देखा है, जो उन्होंने कभी प्रयोग किया। ये दूसरे मनुष्य के बनाए मतसार हैं और आप मसीह को प्रेस्बिटेरियन मतसार में नहीं लपेट सकते, या बैप्टिस्ट मतसार में, या एक कैथोलिक मतसार में, या पेंटिकॉस्टल मतसार में। केवल एक ही चीज है जिसमें मसीह लिपट सकता है और वो आपका हृदय है, न कि आपका मतसार। वो आपका हृदय चाहता है। उसके पास नियंत्रण की मीनार है जहां वो आपके साथ कार्य करना चाहता है, आपको अनंत जीवन पर लाना चाहता है। वो बस स्वीकार नहीं करेगा और आप उसे मतसारों में नहीं लपेट सकते। आप तब नहीं कर सके, आप अब नहीं कर सकते, आप कभी भी इसे करने योग्य नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने मतसार के विषय में अधिक सोचा बजाय कि वे उपहार के लिए सोचते। आज ऐसा ही है। लोग अपनी कलीसिया में अन्य भाषा में बोलना स्वीकार नहीं कर सकते। ये उनके मतसार को तोड़ देगा। वे दिव्य चंगाई को स्वीकार नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और बाइबल के सुसमाचार की महान शिक्षाएं, प्रेरिताई की का सत्य। क्यों? क्योंकि उनका मतसार इसे दोषी ठहराता है। ये कितना मूर्खतापूर्ण होगा कि लपेटने के कागज को लेकर उपहार को फेंक दें, जैसे कि मूर्ख व्यक्ति। उसने डिब्बे को लेकर स्वीकार कर लिया और उपहार को फेंक दिया। कलीसिया भी इसी प्रकार से है और आज लोग करते हैं। वे भूल गए कि परमेश्वर का उपहार यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। वो आज भी वैसे ही तिरस्कृत है जैसे तब था। आज बड़े दिन की रात वो वैसे ही अस्वीकार्य है जैसा वो पहले बड़े दिन की पहली रात में था। वो इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके मतसारों के साथ मेल नहीं खाता। सारे युगों से होते हुए हमारे पास वही चीज है। कोई आश्चर्य नहीं उसके लिए सराय में जगह ना थी। नहीं, ठीक नहीं लिपटा था। वो अलग प्रकार के कागज में चारों ओर से नहीं लिपटा था। वो एक उपहार के समान लिपटा था, परमेश्वर की ओर से, एक उपहार के समान परमेश्वर की ओर से भेजा गया। एक परमेश्वर जिसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। वे दावा करते थे कि वे जानते हैं, दावा किया कि वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु वो उस प्रकार से नहीं आया जो उन्होंने सोचा कि वो आ रहा है, उनके मतों के अनुसार, और वे परमेश्वर के उपहार को ना ले सके। वो भिन्न प्रकार से लिपटा हुआ था। वो एक बालक के समान लिपटा हुआ था। वो चरनी में जन्मा था। वो निर्धन लोगों में से आया। वो धर्मांध के झुंड से आया। वे इस प्रकार का कुछ कैसे स्वीकार कर सकते थे? कोई आश्चर्य नहीं कि उसके लिए सराय में जगह ना थी। फिर भी कलीसियाओं में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया। वे इसमें विश्वास नहीं करते। वे कहेंगे इस प्रकार की चीज से अलग यह कट्टरपना है। हम इससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। ये हमारे पिता की शिक्षा के विरुद्ध है, इस कलीसिया की शिक्षाओं से, हमारे पूर्वजों के मतसारों की शिक्षाओं से। इसलिए मसीह आज वैसे ही ठुकराया हुआ है जैसे वो पहले था। हमारी अच्छी कलीसियाओं में आज रात्रि कोई स्थान नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, हमारी शानदार कलीसियाएं, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में पवित्र आत्मा की सभाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वे से नहीं चाहते। ये राष्ट्र के वर्गों की दृष्टि में उन्हें छोटा बनाती है। अपने को नम्र करके रोते हुए वेदी पर आना यह उनको छोटा बनाता है, और यहाँ तब तक रुके जब तक वे ऊपर से आत्मा से न भर जाएं, और वहाँ से वे जीवन की गवाही के लिए उठे। वे स्त्रियाँ उनके बाल बढ़ें, स्त्रियों के समान व्यवहार करें जैसे उन्हें करना चाहिए, और पुरुष अपनी सिगरेट फेंक दें और पीना छोड़ दें और अपने परिवारों के साथ सही व्यवहार करें। ये उनके लिए कुछ अधिकाई है, इसलिए वे अपनी कलीसिया के मतसार को पकड़े हुए हैं बजाय कि परमेश्वर के उपहार को। स्वीकार करें परमेश्वर का बड़े दिन का उपहार। वे उपहार नहीं बल्कि मत्सा लेंगे। वे उपहार के स्थान पर ऊपर का कागज लेंगे। निश्चय ही वे कागज चाहते हैं, कुछ ऐसा जो चमकीला हो। वे इसके लिए बहुत विवाद कर सकते हैं, परंतु वास्तविक उपहार जो भीतर है वे इसे नहीं चाहते। वो गंदे कपड़े से और जानवरों पर डाले जाने वाले कपड़े में लिपटा हुआ था, और आज भी वो उसी चीज में लिपटा हुआ है जिसे वे पवित्र शोर करने वालों का झुंड कहते हैं, विधर्मियों का झुंड। ये जानवरों पर डालने वाला कपड़ा उसमें लिपटा हुआ है और संसार इसे नहीं चाहता। मैं इस कपड़े को हटाने के लिए बहुत आनंदित हूँ। देखिए इसके नीचे क्या है, अनंत जीवन। परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वासा किया। नहीं, वे उसे नहीं चाहते। ये उनके धार्मिक क्षेत्रों में विघ्न उत्पन्न करता है। आज इसे स्वीकार करना ये उनके लिए विघ्न उत्पन्न करता है। यदि कोई खड़ा होकर कलीसिया में चिल्लाना आरंभ कर दे, या परमेश्वर की महिमा, या कोई आमीन कहता है, इस प्रकार के सेवक कुछ ऐसा, या भक्तगण तो एकदम से प्रवेशक आकर उसे दरवाजे की ओर ले जाते हैं, और यदि आपका नाम पुस्तक में है तो उसे एकदम से काट देंगे। समझे, परमेश्वर को अवसर ही नहीं मिलता। यदि चुना हुआ राष्ट्रपति इस नगर में आए तो झंडे लहराएंगे और तड़क भड़क की बहार होगी और कालीन बिछाएंगे और ऐसा स्वागत जो आपने कभी नहीं देखा होगा, जो कि यदि वे करते हैं तो ठीक है, वो संयुक्त राज्यों में चुना हुआ राष्ट्रपति है। परंतु यदि वो आता है, वे ये सब करेंगे और वे उसका महान स्वागत करेंगे और सोचते हैं कि उसने अपने आप को नम्र किया कि जेफरसनविले इंडियाना में आया, जबकि न्यूयॉर्क और बड़े बड़े नगर उसे बुला रहे हैं हर कहीं, बस क्षण भर के लिए उसके साथ बातें करने को। यदि वो जेफरसनविले हमारे जैसे मामूली नगर में आता है तो वो कैसे करेंगे, जिसे कि हम कुत्ता कहते हैं, और वे सब कुछ करेंगे और सड़कों को सजाएंगे और उसके स्वागत के लिए सब कुछ करेंगे। ये ठीक है, यदि आप एक राजनीतिज्ञ हैं, ये ठीक है। परंतु यीशु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ में आ सकता है, पवित्र आत्मा में आ सकता है, और चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को दिखा सकता है, और हर अखबार उसकी आलोचना करेगा, और लोग इसे पवित्र शोर करने वाला कहेंगे। वे कहेंगे लोग पागल हैं, कोई मतलब नहीं, हमारे पास परमाणु बम है, उस पर हमारा नाम लिखा हुआ है, अनुग्रह पर लात मारना, न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचा। ओ, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तब भी नहीं किया, वे अब भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये क्यों नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने क्यों नहीं किया? परमेश्वर के बड़े दिन के उपहार को स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्होंने ये किया। यदि ये केवल उपहार होता जिसे वे देख सकते और उनके समाज में ठीक बैठता तो ये ठीक होता। यदि आज ये पवित्र आत्मा का धर्म लोगों के समाज में ठीक बैठता तो वे इसे ले लेते। तो फिर उन्होंने इसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए मसीह से अधिक सोचा। ये सत्य है। आप कहते हैं आप उसके विषय में डरावनी कठिन बातें बोलते हैं, मैं उसके लिए ले रहा हूँ, वो मेरा प्रभु है, मेरे पास, मैं उसका दास हूँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं उसके विरोध में चिल्लाऊं जो गलत है। ये ठीक बात है। और मसीही ये विश्वास करते और ये जानते और ये स्वीकार और जानते हैं कि ये सत्य है। क्या कारण था कि उन्होंने इस लिपटे हुए पुलिंदे को स्वीकार नहीं किया? वे जानते थे कि इसके अंदर क्या है और वे ये नहीं चाहते थे। यही कारण है कि आज कलीसियाएं और लोग और राष्ट्र की सरकारें परमेश्वर के बड़े दिन के उपहार को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें क्या है और वे इसे नहीं चाहते। ये स्त्रियों का व्यवहार बदलेगा, ये पुरुषों का व्यवहार बदलेगा, आपको कट्टरपंथी नाम मिलेगा, आपको प्रभु के लिए ठुकराए हुए के संग मांग लेना होगा, आपको अपना जीवन शुद्ध करना होगा, आपको अपना नीचापन छोड़ना होगा, आपको गलत करना, बेईमानी, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना बंद करना पड़ेगा। आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी, और लोग ये नहीं करना चाहते, यद्यपि वे इसे जानते हों, कि ये ठीक बात है, परंतु वे ये नहीं चाहते। ये उनके लिए बहुत अधिक सत्य लाता है, ये उनके पापों को उघाड़ता है, इसलिए वे इसे नहीं चाहते, इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, इससे अलग रहना चाहते हैं। यही रीति उस दिन थी, वे जानते थे कि इसमें क्या लिपटा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा इससे अलग रहो, वे इसे नहीं चाहते। आज भी वही बात है, इसे कभी भी नहीं चाहते, और आज वे पवित्र आत्मा नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें क्या लिपटा हुआ है। वे एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाता है उस पर ध्यान देते हैं, वे वहाँ खड़े होते हैं और उस स्त्री को देखते हैं। हो सकता है जितनी नीच हो सकती है वो है, यहाँ तक कि कुत्ता भी कठिनता से उसकी ओर देखेगा, और देखते हैं कि वो वेदी पर से नई व्यक्ति बनकर आती है। ये देखते हैं कि उस स्त्री ने अपना जीवन शुद्ध कर लिया और बाहर आकर और एक महिला के समान व्यवहार करती है। देखते हैं वो जो ताश की मंडलियों में भागती फिरती थी, एक दिन में सिगरेट के 4-5 डिब्बियां उड़ाती थी, नाइयों की दुकान पर होती थी, शराब खानों में बराबर जाती थी, और वे जानते हैं यदि उन्होंने कभी ये परमेश्वर का उपहार स्वीकार किया, ये यीशु मसीह नाम पुलंदे में लिपटा हुआ है, ये उनके संसारिक मनोरंजन के हर क्षण को बेकार कर देगा, क्योंकि ये उनका पक्ष नहीं लेता। इससे उनको कुछ होता है, ये लोगों को बदलता है, लोग बदलना नहीं चाहते। वे मुझे मेरे हाल पे रहने दो। ये मुझे उस प्रेत ग्रस्त व्यक्ति की याद दिलाता है जब यीशु गदरा में गया और वहाँ पर एक मनुष्य था जिसमें 2000 प्रेत आत्माएं थी, और उन्होंने कहा, क्यों हमारा तुझसे क्या काम, तू यहाँ पर क्यों आया है, हमारे क्षेत्र से जा, हम तुझे यहाँ नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लोग घर पर प्रेतों के संग अच्छा अनुभव करते हैं बजाय कि यीशु के साथ, इसलिए उन्होंने कहा हमारे इलाके से बाहर जा, हम तुझे यहाँ पर नहीं चाहते। बेचारी पुरानी सेना केवल वही था जो सहायता चाहता था। वो सदा उन्हीं के पास आता है जो उसे चाहते हैं, वो उनके पास आता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल वही था जिसकी सहायता हुई थी। मैंने अक्सर सोचा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं कि उन सुअर चराने वालों पर उसकी गवाही का कितना असर हुआ वहां गदरा में। यदि उन्हें इसका भुगतान सुअर के झुंड करना पड़ा, उन्होंने कोई बेदारी ना चाही। यदि लोगों को इसका कुछ भुगतान करना पड़ता है तो वे इससे कुछ मतलब नहीं रखना चाहते। आज भी वैसा ही है। यदि ये आपकी ताश मंडली की कीमत लेना चाहता है, महान समय, आपके श्रृंगार, आपके गंदे चुटकुले, सारी गंदगी और संसार की चीजें, कारण कि वे इसे नहीं चाहते, ये उनसे किसी चीज को भुगतान में लेगा, आपका बड़ा सामाजिक नाम जिसमें बहुत चमक है, परंतु ये आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ देगा जो धूमिल नहीं होता। इसलिए आप अपना चुनाव करते हैं, आप स्वतंत्र इकाई हैं। ओ परमेश्वर के बड़दिन का उपहार ले लो, आपके लिए मेरी प्रार्थना है। जी हाँ, वे इसे नहीं चाहते क्योंकि ये उनको कुछ कर देता है, या सरकार ने किया, सरकार उसे नहीं चाहती, फिर देश उसे नहीं चाहता, नहीं श्रीमान, क्योंकि क्यों वो अपनी बदलने जा रहा था और सरकार आज उसे नहीं चाहती। हम मसीही राष्ट्र समझे जाते हैं, क्यों यूएनए उसे नहीं चाहता, वो उसे छोड़ संसार के सारे विचार लेंगे। वे कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे, उनकी सभाओं में कोई प्रार्थना नहीं, वे बस जाते हैं और जैसे गली में पुरानी बातें कहते हैं, कुत्ता कुत्ते को खाता है। वे मसीह को नहीं चाहते, वो उनकी योजनाएं बदल देगा, इसलिए वे उसे नहीं चाहते। उन्होंने उसे तब नहीं चाहा, वे अब उसे नहीं चाहते। कलीसियाओं ने उसे नहीं चाहा क्योंकि वो उनके मतसार से सहमत नहीं है, क्योंकि उसने उनसे कहा तुम सांप की संतानों, तुम चूना फिरी भीतो, उसने उन्हें सब कुछ कहा जो सिखाया जा सकता था। बूढ़े हेरोदेस को बताया जाकर उस लोमड़ी से कहो, और लोमड़ी से गंदा क्या है, नीच गंदी बदबूदार लोमड़ी से और अधिक क्या। यीशु ने कहा वो यही है, इसलिए उसने काले को काला, सफेद को सफेद कहा, उसने गलत को गलत कहा, सही को सही, इसलिए वे उसे नहीं चाहते। कलीसियाएं आज पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर को नहीं चाहती, ये उन्हें क्रोधित कर देगा और आपको बता देगा गलत और सही क्या है, वे इसे नहीं चाहते। वे एकदम से उस पर प्रहार करेंगे, डीगन सभा एकत्र होकर उसे बाहर कर देगी, दूसरा लेकर, और उनके मतसारों के विषय में बातें करो। भाई मैं कोई मत्सार नहीं जानता सिवाय मसीह के, कोई कानून नहीं सिवाय प्रेम के, और पुस्तक नहीं केवल बाइबल। यही वो हमारी आवश्यकता है, यही वो है जो कलीसिया की आवश्यकता है। परंतु लोग ये नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कलीसिया को नामधारियों में इतना लपेट दिया है, यहाँ तक कि वे ट्रस्टी बोर्ड या डीकन बोर्ड को ले सकते हैं और अच्छे पास्टर को जैसा वे चाहें घुमा सकते हैं, परंतु वे परमेश्वर को नहीं घुमा सकते। ये बात निश्चित है, परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेगा। वे उसका स्वागत नहीं करेंगे, वे अपने मित्रों, राजनीतिज्ञों और आदि का स्वागत करेंगे, परंतु वे मसीह का स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि वे किसी भी समय सांता क्लॉस को लेंगे। संसार ने अधिकार कर लिया है, सांता क्लॉस ने अधिकार कर लिया है। आप जानते हैं, छोटे बालक ये भी नहीं जानते कि बड़े दिन का क्या अर्थ होता है। वे नहीं जानते कि ईस्टर का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार का खरगोश या एक छोटा पीले रंग का चूजा या कुछ और। परमेश्वर के पुनरुत्थान का चूजे से क्या मतलब? वो गंदी चिड़िया है, चूजे से अधिक गंदा और क्या है? और वे उसे वहाँ रखते हैं और मसीह के स्थान को लेता है। सांता क्लॉस से अधिक पौराणिक और क्या है? ऐसी कोई चीज नहीं थी। बालकों को झूठ बता रहे हैं, न्याय के दिन आप इसके लिए उत्तरदायी हैं। कोई आश्चर्य नहीं, लोग नहीं जानते कि क्या करें। वे वास्तविकता को नहीं चाहते, वे कुछ भी बनावटी लेंगे, परंतु वे वास्तविक चीज को नहीं चाहते। वे परमेश्वर के उपहार को नहीं चाहते। ओह, निश्चय ही वे यीशु को नहीं चाहते, यही बात है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक ही कारण वे उसे नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो उनके मंदिर में गया और उसने उनकी गंदगी मंदिर में पाई, उसने मेजें पलट दी और पैसे के लेन देन करने वालों को भगा दिया, उसने ये साफ कर दिया। और यदि पवित्र आत्मा को आसपास के किसी बड़ी कलीसिया में कभी आने दिया, वो इसे साफ कर देगा, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझे? वो इनसे जुआ छुड़वा देगा, इन्हें नाच गाने की पार्टियां छुड़वा देगा, अपने चित्र अखबार में हिप्पी के समान देना, जैसे कि मेथोडिस्ट प्रचारक ने वहाँ हावर्ड पार्क क्लार्क्सविले में किया। यहाँ एक भाई बैठा हुआ है, यदि उसने उसके बाल न बनाए हों, कोई भी मनुष्य परमेश्वर का दास अपना चित्र अखबार में चर्च में हिप्पियों की दावत करता है, जॉन वेस्ली जान जाए तो वो अपनी कब्र में बेचैन हो जाएगा। क्यों? जिस मसीह को जॉन वेस्ली जानता था, उसे उन्होंने छोड़ दिया, ठीक, और एक हिप्पी को स्वीकार कर लिया। उनके पास एक हिप्पी का धर्म है, उनके हिप्पी बालक हैं, हिप्पी पिता, हिप्पी माँ, हिप्पी अध्यक्ष, और ऐसे ही चलता जा रहा है। ओह, कितना अशोभनीय है! क्यों? उन्होंने वास्तविकता का इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा वो उन पर जबरदस्त भ्रांति को भेजेगा कि वे झूठ का विश्वास करें और उसके द्वारा दोषी ठहरे। परमेश्वर ने कहा ये करेगा। तुमने सही का इनकार किया, आपको गलत लेना पड़ेगा, इसे छोड़ कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सीधे को जाने को मना किया, आपको उल्टे पर जाना पड़ेगा, सीधे को छोड़ किसी और मार्ग पर जाओ, इसलिए कि तुम सही और गलत पर एक समय नहीं जा सकते। जब उन्होंने पवित्र आत्मा का इनकार कर दिया, उन्होंने मसीह का इनकार कर दिया, उन्होंने परमेश्वर की योजना का इनकार कर दिया, उन्होंने संदेश वाहक का इनकार कर दिया, उन्होंने हर चीज का इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें उनके पापों में छोड़ दिया और न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचा। भाई बहन, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने किया है। उन्होंने मसीह का इनकार कर दिया, उन्होंने उसकी योजना का इनकार कर दिया, उन्होंने उसके आत्मा का इनकार कर दिया। उसने 50 वर्षों तक यत्न किया है, पवित्र आत्मा अमेरिका में उतर रहा है, वे 50 वर्षों से इसका इनकार कर रहे हैं, और आज रात्रि ये पहले कभी से अधिक काला और अंधेरा है, और यहाँ तक ये उन पर भी आ पड़ता है। आरंभ में उनके बालक ने इसे संगठित और नामधारी कर दिया और इसे संगठनों में बदल दिया, जब तक कि उन्होंने उस परमेश्वर का इनकार नहीं कर दिया जिसे उनके पूर्वजों ने स्वीकार किया था। आमीन। फिर दावा करते हैं कि वे पेंतिकॉस्तल हैं। ओह नहीं, ये सुअरी को घोड़ा नहीं बनाता कि घुड़साल में रहे, नहीं, वास्तव में नहीं, इससे अधिक नहीं। ये मनुष्य से जो पेंतिकॉस्तल कलीसिया से जो संबंध रखता है, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कुछ भी, इससे मसीह नहीं बनता। वो अब भी पापी है, जब तक वो मन परिवर्तन नहीं होता, और जब तक उसका मन परिवर्तन हो जाता है, वो फिर से जन्मा हुआ, पाया हुआ परमेश्वर का आत्मा, और बदल गया, और उसने मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा भीतर आया और उसे नई सृष्टि बनाया, एक नई रचना। तब फिर उन्होंने इसका इनकार कर दिया। वे अब उसका इनकार करते हैं। वो उनके गल्ले की मेजों को पलट देगा, उनके ट्रस्टी बोर्ड को उलट देगा, उनके पास्टर की समिति, वे नहीं करेंगे, वे समिति को लेंगे। ठीक है, वो वहाँ कितना भिन्न होगा यदि आज वो कलीसियाओं में आए, परंतु वो अंदर नहीं आ सकता। उस रात्रि हमने कलीसिया युगों में पाया कि वो अपनी ही कलीसिया के द्वारा निकाल दिया गया, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, फिर से भीतर आने का यत्न कर रहा है। एक अनुग्रहकारी पिता अपने लोगों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाने के पश्चात अपनी कलीसिया में फिर से आने का यत्न कर रहा है। उसने कहा, मैं ही हूँ जो सात चिरागदानों के मध्य में चलता है, और अंतिम कलीसिया युग यहाँ वो बाहर है। उन्होंने उसे बाहर कर दिया, कहाँ? इस लुदिकिया युग में फिर खड़ा हुआ है, फिर से भीतर आने का यत्न कर रहा है, अपने ही द्वार पर, अपनी ही कलीसिया। कितनी दयनीय बात है। बाइबल का ये सबसे दयनीय चित्र है जो दिखता है। क्या ये प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय है, बल्कि तीसरा? ये ऐसा कैसे है? मसीह बाहर। एक और दुख भरी बात है जो मैं सोचता हूँ, बहुत ही दुख भरे वचन जो कभी यीशु ने कहे, वो जब उसने कहा, मैं स्वयं को पवित्र करता हूँ ताकि वे पवित्र हो सकें। दूसरे शब्दों में उसे अधिकार था, वो एक मनुष्य था, उसे अधिकार था कि उसका घर हो, उसे अधिकार था कि उसका परिवार हो। वो एक मनुष्य था, ऐसे ही मनुष्य था जैसे आप या मैं हूँ, अपने मनुष्यत्व में ऐसे ही मनुष्य जैसे हम थे। इसके लिए उसका अधिकार था, परंतु वो 12 मनुष्यों को प्रशिक्षित कर रहा था जो कि समस्त संसार में सुसमाचार ले जाने वाले थे। इसलिए उसने उनके कारण स्वयं को पवित्र किया। मैं स्वयं को इनके लिए सिद्ध करता हूँ। परमेश्वर एक उपहार स्वयं सिद्ध रख रहा है। ओ परमेश्वर का उपहार, आप लोग जो दावा करते हैं आपने उसका आत्मा पाया है, स्वयं को पवित्र रखें। जी हाँ, संसार की वस्तुओं से अलग रहें, सिद्ध हो जाएं। ओ, किसने जाना कि उपहार की उस गठरी में क्या था? क्या कोई था जिसने कभी ढूंढा कि उसमें क्या था? मैं बहुत आनंदित था कि वहाँ था। किसने से जाना? ये एक छिपी हुई चीज थी, ठुकराया हुआ पत्थर, परंतु कोई था जिसने पाया कि उसमें क्या था। मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं चीजों को खोजना पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं? मैं सोने के ढेलों को खोदना पसंद करता हूँ और उन पर पॉलिश करना, देखिए क्या उसमें क्या है। वो जांचने वाले क्षेत्र के सामने भी रखा गया कैलवरी पर, वो 100% था। निश्चय ही वो जो उन्होंने कभी पाया महानतम सोना था, बहुत ही महंगा हीरा, सदा सदा तक। बाइबल ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के समान है जो हीरा खरीदता है, और जब उसे ये महान वाला पाया उसने सब दूसरे बेच दिए और इसके लिए देने को कि उसे खरीद ले। वो महानतम कैरेट का हीरा जो कभी भी पृथ्वी की धूल में से निकाला गया हो, महानतम सोना जो कभी भी मिट्टी से निकाला गया, वो एक रत्न है, स्वर्ग का रत्न, एक बड़ा हीरा। जब दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ा हीरा मिला, मैं किम्बरले में हीरे की खान में था, और वे उन हीरों को लेते, और जब वे उन हीरों को मट्टी में से निकालते हैं कच्चा, तब वे उसे छांटते हैं, और कारण कि वे उसे छांटते हैं, उनको काटना, ज्योति को परिवर्तित करना, पत्तियों को बुझा दो, उसका कैरेट दर्शाता है कि हीरा किस कैरेट का है। यदि ये अधिक आग और चमक नहीं रखता तो ये हीरा अच्छा नहीं, परंतु जब वो रखता है, ये शीशा है, परंतु जब ये वास्तविक हीरा है, वास्तव में कैरेट वाला हीरा, तो ये परिवर्तित करके विभिन्न रंग दर्शाएगा। यही वो था, वो एक हीरा था, और वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे पापों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। ओ परमेश्वर की वे प्रेम की किरणें, और उससे ज्योति परिवर्तित होती है, चंगाई की सामर्थ, प्रेम, पुनरुत्थान। परमेश्वर ने उसे घायल किया और उसे कुचला और उसे छांटा और उसे काटा उस रोमी तलवार के द्वारा और रोमी कोड़े, जब तक कि उसकी पसलियों की खाल ना फट गई, और उसकी पीठ से लहू बह रहा था, और उसके सिर से उसकी दाढ़ी पर होते हुए, और उसके पैर से, ओ वो क्या कर रहा था, वो प्रेम को परिवर्तित कर रहा था। मुलायम गुदगुदे तकिए के बदले उसने क्रूस को गले लगाया, भूसे की चरनी के बजाय छोटा गुलाबी लबादा पहने एक जानवरों का कपड़ा। ओ भाई, क्या आप देख सकते हैं प्रेम की क्या गहराई होती है? उस रात्रि मैं अपने घर में कुछ लोगों से बातें कर रहा था। कोई भी कभी इसमें मिलावट ना कर सका कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। वो ओ परमेश्वर का प्रेम कितना भरपूर और शुद्ध, वो अंतिम पद या पहला पद मैं विश्वास करता हूँ पागल खाने की दीवार पर लिखा मिला, हमारे पास सागर स्याही से भरा हो और आकाशों को चरम पत्र बनाया होता, पृथ्वी पर हर तिनका लेखनी और पेशे से हर व्यक्ति लेखक हो, इस पर परमेश्वर का प्रेम लिखें, सागर को सुखा देगा या चरम पत्र सबको समा सकेगा एक से दूसरे आकाश तक। उन तिनकों के विषय में सोचें जो पृथ्वी पर जिनको लेखनी बनाया और करोड़ों पुरुषों को पेशे से लेखक, छोटे से 5 अक्षर लिखने के लिए LOVE, मेरा अर्थ प्रेम के 4 अक्षर, परमेश्वर का प्रेम सागर को सुखा देगा, जबकि 5 में से 4 पानी है। और मैं वहाँ पालमार पहाड़ पर खड़ा हुआ उन कांच के लेंसों में से देख रहा था और 2 करोड़ प्रकाश वर्ष में देखा, या वो चरम पत्र जो आकाश से आकाश फैला है समा सकता है। परमेश्वर का प्रेम, कैसे परमेश्वर ने स्वयं को खोल दिया और बड़े दिन की गठरी में भूसे पर लेटा हुआ है। पहली चीज उसे अपने छोटे सिर को भूसे पर लाना और एक जानवरों के कपड़े का गंदा टुकड़ा जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। अंतिम चीज जो उसके पास थी कांटों का ताज, उस गंदे चिथड़े के साथ जो उसकी आंखों पर बंधा था और उसके सर पर ये कहते हुए मारा, यदि तू भस्म रखता है तो हमें बता तुझे किसने मारा, और फिर क्रूस पर टांग दिया। प्रेम पहुंच कर रहा था जब उसके अपने बालक उसके लहू के लिए चिल्ला रहे थे। वो चिल्लाया, पिता इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ये प्रेम है। कलीसिया ये नहीं चाहती, वे मत्सार चाहते हैं। हमें प्रेम की आवश्यकता है। कलीसिया मत्सार के द्वारा मर रही है, ये केवल प्रेम के द्वारा जीवित रह सकती है क्योंकि प्रेम अनंत जीवन है। प्रेम सब बातों में जयवंत होता है। वहाँ प्रेम सबसे सामर्थ्य शक्ति है। नहीं, वे उसे नहीं चाहते क्योंकि वे जान गए कि उस उपहार में क्या है, परंतु उनमें से कुछ पर ये प्रकट हो गया कि ये उपहार क्या है, उसमें क्या था, कुछ ने उसमें देखा। मैं विश्वास करता हूँ सबसे पहले उस बड़े दिन की बंदी गठरी में किसने झांका, आप जानते हैं वो कौन था। मैं विश्वास करता हूँ कि वे स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों को मालूम था, उन पर प्रकट किया गया, वे ये जान गए क्योंकि वे पहाड़ की ओर आए। संभव है छोटी मरियम वहाँ थकी हुई धूल में बैठी हुई थी। एक निर्धन पुराना चरवाहा लड़का आया, भीड़ जैसी बदबू, उस छोटी माँ को वहाँ रात्रि में बैठे हुए देखा, कुछ अर्थ था जिस प्रकार लोग आज देख सकते हैं कि वहाँ कुछ घटित होने को है। आश्चर्यजनक समय, लोग नहीं जानते कि कहाँ जाएं। संभव है बूढ़ा लड़का चरवाहा वहाँ आया और उस छोटी माँ को देखा, उसे कुछ हुआ। उसने कहा, यहाँ बर्तन में मेरे पास थोड़ा ठंडा पानी है, क्या आप पीना चाहेंगी। और छोटे परिवार ने उसे धन्यवाद दिया। होने वाली माँ पानी का घूंट ले रही है। संभव है वो एक साधारण चरवाहा उस रात्रि उस पहाड़ पर टिका हुआ था जब नीचे चरनी में जहाँ छोटा बालक चिल्ला रहा था। ओ तब वो संसार उनके लिए कोई स्थान नहीं था, कोई उसे नहीं चाहता था, परंतु उसी समय में एक चरवाहा बाहर पहाड़ी पर, स्वर्गदूत नीचे आए और बड़े दिन का पहला गाना गाने लगे, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मसीह उद्धारकर्ता जन्मा है। ये प्रकट हो गया था। यही केवल मार्ग था कि कोई संसार में कभी जान पाएगा कि उस गठरी में क्या है। ये आप पर प्रकट होना ही है। आप उसे अस्वीकार कर देंगे, कहते हैं ये धर्मांधता है, परंतु जब आपको प्रकाशन मिलता है तो आप उसे खोजेंगे, आप इसे खोलेंगे और परमेश्वर भीतर आकर आपके साथ भोजन करेगा और आप उसके साथ, जब आप द्वार खोलने के लिए तैयार हों, उसे भीतर आने दें। वो छोटा बंडल आपके हृदय पर खटखटा रहा है, महानतम बड़े दिन का उपहार जो कभी दिया गया, पहला वाला और सबसे महान वाला। वो छोटा बंडल मनुष्य के हृदय पर खटखटा रहा है, मैं भीतर आकर और खाना खाऊंगा। आप इसे कभी भी नहीं जान पाएंगे जब तक आप पर प्रकट ना हो जाए। जब ये आप पर प्रकट हो जाएगा तो आप इसकी खोज में निकल जाएंगे। जब आप देखते हैं ये जीवन है और जीवन का केवल यही मार्ग है, जब आप देखते हैं कि आपकी कलीसिया सूखी और मरी हुई है, जब आप देखते हैं कि आपका पास्टर के साथ हाथ मिलाना या आपके ऊपर नमकीन पानी छिड़कना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तब आप इसकी खोज में निकल पड़ेंगे। जब आप पलंग पे पड़े हुए मर रहे हैं और डॉक्टर कहता है कि आपके लिए कुछ नहीं बचा, आप कुछ मिनटों में मर जाएंगे, तब आप उस बंडल में देखना चाहेंगे। आज रात्रि उसमें देखिए, क्योंकि फिर ये आपसे ले लिया जाएगा। बाइबल ने कहा, यदि तुम अपने स्वस्थ दिनों में मुझे अस्वीकार करते हो जैसा आप आज हैं, जब संकट आता है तो मैं केवल तुम पर हंसूंगा। इसलिए अच्छा हो कि आज रात्रि आप बंडल की खोज करें। ये सब किस विषय में है? ज्योतियाँ, पवित्र ज्योतियाँ स्वर्ग से आ रही हैं, उनके चित्र लिए गए हैं, महान चिन्ह, परखने वाली शक्ति, अन्य भाषाओं में बातें करना, अनुवाद, आने वाली बातों को बताना, सुसमाचार की सामर्थ, बीमारों को चंगा करना, कैंसरों को लेकर चंगा करना और अंधी आंखें खोले जाना, इस प्रकार की बातें, ये सब किस लिए? क्योंकि ये पवित्र शोर करने वालों का झुंड, सावधान रहें, वो पशुओं वाला कपड़ा, ये हो सकता है। ऐसा ही बालाम ने किया, उसने कैसे सोचा कि परमेश्वर इज़राइल जैसे लोगों को कैसे श्रापित करेगा, परंतु वह देखने में असमर्थ रहा। बजाय इसके कि वो मारी हुई चट्टान को देखता, उसने पशु वाले कपड़े को देखा और उस पीतल के सर्प को जो उनके आगे आगे चल रहा था कि छुटकारा करे। ऐसा ही आज है, बजाय कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को, मसीह के चिन्ह को करते देखें और लोगों के मध्य में आश्चर्यकर्म जैसी कि उसने अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा की है, जैसा उसने कहा, जैसा लूत के दिनों में था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। जब उसने उन चिन्हों को करना आरंभ किया और आश्चर्य कर्मों को, लोगों के मध्य में स्वयं को जीवता दर्शा दिया, ये क्या था? निर्धन और नम्रों के बीच में निर्धन लोग, वे जाकर इसे धर्मांधता कहते हैं, इसे बाहर करो। अच्छा हो कि ये इससे पहले आप इससे दूर हो, खोज लो। जी हाँ, ये बदबूदार चरवाहे लोग, मुश्किल से उन्हें आसपास होने दे, वे वहीं लेटे और उन भेड़ों के साथ सो गए और उसी गद्दे पर सो गए, बल्कि उसी मैदान में, और उन्हें तब तक पाला कि आपको ऐसी गंध लगे कि भेड़ आ रही है। कोई भी जानता है, भेड़ के झुंड का चरवाहा भेड़ों के साथ ठीक दरवाजे पर सोता है, उनके बीच में लेटता है। यीशु ने कहा कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। मुझे प्राय आश्चर्य हुआ, वो कैसे था? जब तक मैं पवित्र राष्ट्रों में था, यानी बल्कि पूर्वी देशों में, मैंने पाया कि कैसे चरवाहा भेड़ों को अंदर रखता है और द्वार पर लेटता है। भेड़ बिना उसको पार किए बाहर नहीं जा सकती, भेड़िया बिना उसको पार किए भीतर नहीं जा सकता, वो द्वार है। मैं आनंदित हूँ कि यीशु हमारे हृदय के द्वार पर लेटा हुआ है। हम बाहर नहीं जा सकते या बिना उसकी जानकारी के कुछ नहीं कर सकते, या बिना उसकी जानकारी के कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। इसलिए जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। इससे हमें रोना, चिल्लाना और परमेश्वर की महिमा करवा देना चाहिए और कहते हैं, बचाने वाले के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक चरवाहा है जो हमारे हृदय के द्वार पर लेटेगा और कोई चीज जो आ रही है हमें चेतावनी देता है, इसके लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, देशों के उस पार कुछ नम्र बुद्धिमान मनुष्य, वे ज्योतिषी, सितारों के ताकने वाले, जब मैं पूर्व में था, बहुत समय नहीं हुआ, वे अभी वैसे ही बैठते हैं। वे निर्धन परिवार के लोग होते हैं, वे तीन तीन जाते हैं, वे गलियों में बैठते हैं। बिली और मैं वहाँ भारत में थे, वहाँ पीछे जहाँ वे भारत से आए। अब उन्होंने कहा, हमने उसका सितारा पूर्व में देखा है। वे पूर्व में थे जब उन्होंने सितारा देखा। यरूशलेम पश्चिम में है, इसलिए फिलिस्तीन भारत का पश्चिम है, इसलिए उन्होंने उसका तारा देखा जब वे पूर्व में थे और उसकी उपासना करने आए। अब ये ज्योतिषी कभी भी समतल में नहीं बैठते, वे बस नीचे बैठते हैं। वे पूरे दिन बैठे, रात्रि के समय उनकी ऊंची मीनार होती है, वे वहाँ जाते हैं और इस मीनार में टिकते हैं। वे आग जलाते और राष्ट्रों के विषय में बातें करते हैं, राज्यों का पतन, राजाओं का पतन होना, और वे एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये ठीक बात है, वे विश्वासी हैं, वे मुसलमान। वास्तव में ये मेदो पारस से निकले हैं, वहाँ पीछे डैनियल के दिनों से, और वे वही हैं। और पत्रस ने प्रेरित 10:35 में कहा कि वो महसूस करता है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति या राष्ट्र का तरफदार नहीं, परंतु वो प्रत्येक जो हर राष्ट्र में है, जो उससे डरते हैं, और कोई भी मनुष्य परमेश्वर से डरेगा। उन ज्योतिषियों को वहाँ देखो, उस तारे को परमेश्वर का उपहार देख रहे थे और इसे पहचाना। यरूशलेम के मंदिर में पादरी थे उनसे पहले धर्मी लोगों में। जी हाँ श्रीमान, आमीन। ज्योतिषियों को मैं उन्हें पवित्र आग के चारों ओर बैठे हुए देख सकता हूँ एक रात्रि में। क्या हमारे पास थोड़ा समय है? हाँ, उस पवित्र आग के चारों ओर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तब वे जाएंगे। ओ, उन्होंने आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया, वे उन सबसे परिचित थे, हर चाल से वे इस विषय में जानते थे। इसलिए एक रात्रि जब वे वहाँ बैठे थे भजन गा रहे होंगे, वे इस महान बात पर आएंगे और अध्ययन करेंगे। वे हर तारे को जानते थे कि वो कहाँ स्थिर है, नाम से जानते थे क्योंकि उन्होंने आकाश के नक्षत्रों का अध्ययन किया है। और कोई आश्चर्य नहीं, एक अपरिचित आकाशीय नक्षत्र में उन्हें ताक रहा था। अच्छा, वे आश्चर्यचकित हुए, ये नई चीज वहाँ पर क्या है? ओह, वहाँ कुछ नया है, ये हुआ, ये अलौकिक है। वो क्या कहलाया? वापस वचन में। वे वचनों को जानते हैं क्योंकि डेनियल उनमें सर्वोच्च था। डेनियल का दूसरा अध्याय आप जानते हैं हमें बताता है कि उनके ऊपर सर्वोच्च पद पर था, इसलिए उसने उन्हें सिखाया। कोई संदेह नहीं, एक रात्रि वे वहाँ बैठे हुए पवित्र वचन पढ़ रहे थे और डेनियल ने कहा कि उसने इन सब राज्यों को देखा जब तक अंत में वे उसमें बदल गए जो वे थे, प्रत्येक मेदो फार्स और नीचे तक रोम पर आता है। और तब अंत में उसने देखा एक पत्थर बिना हाथों के खोदे पहाड़ से कटकर। उन्होंने कहा ये वही समय होना चाहिए। तब उन्होंने पीछे का अभ्यास स्मरण किया, पहले के उस समय में वहाँ पीछे इसराइल के यात्रा के दिनों में जब वे बाहर आए और बालाम को कहते सुना। जब उसने इसराइल को देखा, उसने कहा याकूब से एक सितारा उदय होगा। आमीन। ये उसी समय के लगभग होना चाहिए जब वे उन बातों पर विचार कर रहे थे कि नया मेहमान प्रकट हुआ। ये अक्सर जब आप अपनी बुद्धि मसीह पर रखते हैं कि वो आपके पास आता है। ये अधिकांश ऐसे समय में जब आप उसके विषय में सोच रहे हैं जब वो प्रकट होता है। आप जानते हैं जब आप ठीक होने के विषय में सोचते हैं, कुछ सही कर रहे हैं, तभी वो जब आपके पास आता है कि आपकी सहायता करे। और ये उसी समय में होना चाहिए। और उन्हें ऊपर देखना था और इस नए अतिथि को देखा, ये पश्चिम की ओर उनकी अगुवाई करने लगा। तुरंत ही उन्होंने पश्चिम की ओर चलना आरंभ कर दिया। टिग्रिस नदी के पार अगुवाई कर रहा है, रेगिस्तान से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, कीचड़ में से होते हुए। ओ प्रभु, आगे आगे वे जान गए कुछ घटित हो रहा है। वहाँ कुछ अलौकिक घटित हुआ है। और उन्हें कहाँ पर आना था? उन्होंने कहा निश्चय ही यदि ये डेनियल की भविष्यवाणी है, वो यरूशलेम का महानगर तो धार्मिक लोगों की राजधानी, उस राज्य के वे अपने राजा के स्वागत के लिए तैयार होंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वे सब इसके विषय में जानते होंगे। यद्यपि हम इसे अपने में नहीं समझते, हम ज्योतिषी निर्धन नम्र लोग हैं, परंतु हम जो किसी बात की बात जो रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे बीच में कुछ उदय हुआ है। ये छोटा अलौकिक, ओ प्रभु, वे तैयार थे। हालेलुया। वे बाहर गए, नम्र मनुष्य कि परमेश्वर के तारा दूत को पाएं। वे परमेश्वर के तारे दूत का अनुकरण करने जा रहे थे जब तक कि वे सिद्ध ज्योति तक ना पहुंच जाएं। ओ प्रकाशित वाक्य 20, प्रकाशित वाक्य 1:20 ने कहा इन कलीसियाओं के सितारे, आज उस सितारे के उजाले को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आमीन। जो उसकी महिमा को परिवर्तित कर रहा है, जो उसकी सामर्थ्य को परिवर्तित कर रहा है, जो उसके दिव्यत्व को परिवर्तित कर रहा है, और उसके पीछे पीछे तब तक चलें कि उस ज्योति को ना पाले। पश्चिम की ओर अगुवाई कर रहा है, अब भी बढ़ रहा है, हमारी सिद्ध उजाले तक अगुवाई कर। ओ बढ़ते चलें, कोई मतलब नहीं कितना मूल्य चुकाना पड़े, पहाड़ों पर से, जंगलों से, हर जगह से होते हुए। और अंत में वे यरूशलेम को पहुंच गए। और जैसे ही ये महान नामधारी कलीसिया में पहुंचे, सितारे ने उन्हें छोड़ दिया। आश्चर्य, उन्होंने सोचा इसे यही होना चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे नगर में वे गाते चिल्लाते हर गली में गए, सड़कों से। वो कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा? पूर्व में हमने उसका तारा देखा है, हम उसे दंडवत करने आए हैं। वो कहाँ है? आश्चर्य, उन्होंने अपने ही वर्ग में से कोई उत्तर नहीं पाया। ओ, अब मैं अन्य भाषाओं में लगभग बोल सकता हूँ। उनके पास उत्तर नहीं मिला, उनके पास तब भी उत्तर नहीं था, उनके पास अब भी नहीं है, वे नहीं जानते। उन बुद्धिमान पुरुषों ने यीशु को उनके धार्मिक समाज में नहीं पाया, वो उन्हें उनके धार्मिक वर्ग से बाहर मिला। और आज बुद्धिमान लोग हृदय से बुद्धिमान हैं, उसे इन बड़े बड़े नामधारियों में नहीं पाते, वे इसके विषय में कुछ नहीं जानते, उनके पास उत्तर नहीं है। ये सब दिव्य चंगाई क्या चल रहा है? वे कहते हैं अन्य भाषाएं बोलना और अनुवाद और भविष्यवाणी, ये सब क्या है? और ये मसीह के चिन्ह, ओ ये निरर्थक, इससे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। समझे, उनके पास उत्तर नहीं है, उनके पास तब भी नहीं था, अब भी उनके पास नहीं है। परंतु इसने ये काम कर दिया, इसने उनसे ढूंढवाना शुरू कर दिया। मैं सोचता हूँ हमारा भाई ड्यूप्लेसिस, इसने इसे एक प्रकार से ले लिया है। वे वापस चले गए, सोने वाली कुंवारियाँ कुछ तेल खरीदने के लिए वापस चली गईं। परंतु जब वो आया, जब वे उसके पीछे चले गए, इसलिए अब हम कितने समीप हैं। हम देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी कलीसियाएं वापस जा रही हैं, कहते हैं संभव है कि हमने कुछ छोड़ दिया, अच्छा हो कि हम इसे ढूंढ लें। वे इसे कभी ना पाएंगे, इसे स्मरण रखें, वे इसे कभी नहीं पा सकेंगे। वे मृत हैं और वे मरे हुए हैं और मरे हुए, वे कभी भी जीवित नहीं होंगे। बस याद रखें, मैं ये प्रभु के नाम में बोलता हूँ और ये टेप पर है। जी हाँ श्रीमान, वे कभी भी जीवित नहीं होंगे, वे खत्म हो गए। इसलिए यही कारण है मैं उन प्रोग्रामों यानी योजनाओं में रुचि नहीं रखता, बस एक ही बात में रुचि रखता हूँ। जितनी जोर से हो सकता है उतना चिल्लाऊं, जो कोई भी होगा, नामधारी को जिलाने को नहीं परंतु यीशु मसीह को वापस लाने को। जी हाँ श्रीमान, नामधारी कलीसिया में कभी नहीं, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, सदा से रहा है, सदा रहेगा। परमेश्वर को बाहर ही रोक दिया, हर धार्मिक बात को जो है अस्वीकार कर दिया, ये कभी भी जीवित नहीं होगा। इसलिए इस बड़े दिन पर कोई अंतर नहीं है, वो पहला बड़ा दिन था, ये एक ही बात है। वे ज्योतिषी नगर में इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ है वो, कहाँ है वो? ओ प्रभु, मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकूं। मेरे पास एक चित्र है, अभी यहाँ मेरे पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास है, डॉक्टर डिली, एक महिला डॉक्टर जो मेरी सभा में चंगी हुई थी, अभी उसके पास रील है, मध्य रात्रि तक 3 मिनट कहलाती है। और जब हम उन यहूदियों को उनके देश में आते हुए लेते हैं, अब इस समय फिलिस्तीन में, जो कि प्रभु के द्वारा बोला गया, और वे ऐसा करेंगे, उसके दूसरे आगमन से पहले वे ऐसे करेंगे। एक भाई उस दिन इसराइल जा रहा था, प्रश्न पूछा, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, और उसे मना कर दिया। इसराइल एक राष्ट्र के समान आएगा, ना कि व्यक्तिगत, एक राष्ट्र जन्म लेगा, ये एक राष्ट्र के समान आएगा। परंतु उन बेचारे यहूदियों को देखें जो नीचे वहाँ ईरान और विभिन्न स्थानों में हैं। आपने लाइव पत्रिका में पढ़ा है, उन्होंने हवाई जहाजों पर नहीं आना चाहा, वे कभी भी उसमें नहीं दिखाई दिए, वे पुरानी लकड़ी के हलों से जोत रहे हैं और आदि आदि। उन्होंने कहा, क्यों? रब्बी बाहर निकला और बोला, एक मिनट रुको, क्या हमारे भविष्यवक्ता ने नहीं कहा कि जब हम अपने राष्ट्र को वापस गए, हम उकाब के पंखों पर गए? ओ प्रभु, ओ। और वे आए, TWA के हवाई जहाज में आए, उठ गए। भविष्यवक्ता को मालूम नहीं था कि वे मोटर से चलते थे, वे बड़े उकाब के समान दिखाई दिए और वे उकाब के समान हवा में चले गए। इसलिए नबी ने कहा, जब तुम वापस आते हो, ये 2500 वर्षों पहले, ओ परमेश्वर, 2500 वर्षों पहले जब वे रोमियों के द्वारा बंधुआई में गए और संसार की हवाओं में फैल गए। उसने कहा, वे मैं उन्हें नहीं भूलूंगा, मैं इन्हें फिर से वापस लाऊंगा, परंतु मैं उनकी आंखों को अंधा करने जा रहा हूं, ताकि अन्य जातियां, मैं उनमें से कुछ लोगों को अपने नाम के कारण निकाल सकता हूं। मेरा नाम उन्हें दे दो, जब वो दिन पूरे हो जाएं, मैं उन्हें फिर से एकत्र करूंगा। और जब वे अपने घरों को लौटते हैं, वे इस प्रकार की चीजों पर आते हैं। और यशायाह ने उठते हुए देखा, पार आ गए, उसने कहा, उकाबों के पंख पर। वो बूढ़ा नबी वहाँ खड़ा हुआ और कहा, हमारे नबी ने कहा कि अंत के समय में हम उकाब के पंखों पर घर वापस जाएंगे। वे जहाज में चढ़े और जब वे वहाँ उतरे, बूढ़े अंधे अपाहिजों को अपने कंधों पर लिए हुए उन्हें नीचे लेकर उतरे, वहाँ उनका साक्षात्कार था। मेरे पास यहाँ टेप पर है। कहा, क्या तुम घर यहाँ वतन में मरने आए हो? कहा, नहीं, हम मसीह को देखने आए हैं। ओ भाई, क्या मामला है? और उनकी कलीसिया के पास उत्तर नहीं था, क्या मामला है? भाई, हम अंत के समय में हैं, जब सांझ के उजियाले चमक रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ कलीसिया में फिर वापस आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे आरंभ में नबी ने कहा, सांझ के समय उजियाला होगा। कलीसिया नहीं जानती कि वे क्यों यहाँ एकत्र हो रहे हैं, उनके पास उत्तर नहीं है, यद्यपि परमाणु बम के पास उनके लिए इसका उत्तर है, वहाँ निश्चय ही। परंतु हम सांझ के समय में हैं, हम जो सोचते हैं उससे अधिक समय हो गया, निश्चय ही। ये ज्योतिषी सड़कों पर ऊपर नीचे, उनके पास उत्तर नहीं था, क्या हुआ, क्या हुआ? अंततः हम पाते हैं उन्होंने इसका अनुकरण आरंभ किया। जब ये वहाँ पहुँचा, वे इसे नहीं पा सके, उन्हें नगर में कोई उत्तर नहीं पा सके, उनके धार्मिक क्षेत्र में नहीं, ना ही वे अब पाते हैं। वे क्या यरूशलम? उन्हें अलौकिक चिन्ह के विषय में कुछ नहीं मालूम हुआ। तुम कौन से अलौकिक चिन्ह के विषय में बात कर रहे हो? हम जब वहाँ पूर्व में थे, हमने उसका तारा देखा, हम उसके पीछे पीछे चले। ये कहाँ पर है? मैं इसे नहीं देखता। अरे हमें इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं। ये ठीक वचन को पूरा कर रहा है, परंतु उनके पास उनके धार्मिक क्षेत्रों में इसका कोई उत्तर नहीं है। उनके पास आज भी नहीं है। ये अन्य भाषा में बोलना क्या है? ये कैसे लोगों का झुंड उठ रहा है? बीमारों को चंगा करना और ये सारे आश्चर्य कर्म करना और चीजें और चिल्लाना रोना, इस प्रकार की चीजें, ऐसा लगता है उन्होंने वहाँ पीछे ये बाइबल में किया है। आह निरर्थक, इससे कुछ नहीं। वे अलौकिक के विषय में कुछ नहीं जानते। क्यों? यहाँ ये आता है, वे तारे की ज्योति का अनुकरण नहीं करेंगे। चमकता तारा, परमेश्वर का दिशा सूचक उस सिद्ध प्रकाश की ओर। ओ पश्चिम में अगुवाई कर रहा है, अब भी आगे बढ़ रहा है सिद्ध प्रकाश की ओर। हमारी अगुवाई कर, ओ बैतलहम के तारे। हमने यहाँ पश्चिम में उसका तारा देखा है। किस प्रकार का तारा? उसकी कलीसिया का तारा, पवित्र आत्मा मनुष्य में चल रहा है। हमने उसका तारा देखा है और हम उसको दंडवत करने आए हैं। आमीन। बुद्धिमान पुरुषों, बुद्धिमान स्त्रियों, यही है वो हृदय में नम्र। हमने उसका तारा देखा है और हम उसको दंडवत करने आए हैं। ओ वे अलौकिक बातों के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। वे उजियालों और चीजों के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। इसने इन्हें ताका, निश्चय ही ये आज भी वैसे ही है। यद्यपि वे इस विषय में कुछ नहीं जान पाए, धार्मिक वर्गों ने भी नहीं, ना ही वे आज इस विषय में कुछ जानते हैं। ध्यान दें, मैं इसे पसंद करता हूँ। ओ यही है जो अच्छा है। जब तक वे उनके नामधारियों के क्षेत्र में रहे, तारा उन पर कभी भी प्रकट नहीं हुआ। ये यरूशलम के फाटकों से बाहर निकल गया और बाहर रहा, भाई बाहर रहा, जब तक वे नामधारियों के क्षेत्र में चलते रहे। कहाँ है वो? निश्चय ही आपके पास तक को इस विषय में कुछ मालूम होना चाहिए। इस सब के विषय में क्या है? आप रब्बी और आप पास्टरों और आप मेथोडिस्टों, बैप्टिस्टों, प्रेस्बिटेरियनों, कैथोलिकों और तुम पुरानी कलीसियाओं, इस प्रकार की निश्चय ही तुम्हारे पास इसका उत्तर है। कहाँ है वो? ओ प्रभु, समझे? वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। और वे जो वहाँ थे, वे उनके अंधियारों में रहे जब तक वे इससे बाहर नहीं आ गए, और जैसे ही वे नगर से बाहर निकले, वहाँ वो तारा फिर से था। महिमा हो मेरे लोगों, तुम वहाँ से बाहर निकल आओ। प्रभु ने कहा, बाबुल भ्रम से बाहर आओ, अपने मतसारों से बाहर आओ और अपने ही ढंग की बातों में से, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रभु की ये वाणी है। उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। कलीसिया में उनकी हिप्पी दावतें और ताश और दूसरे प्रकार की चीजें और नाच। अधिक समय नहीं हुआ, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, कहा बिल थोड़ा यहाँ पर आओ। मैं सोचता हूँ वो ये आराधनालय में बैठी है। आज रात्रि कहीं पर मैं गया, मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और यहाँ इंडियाना में एक बड़ा मेथोडिस्ट चर्च है, उसमें रॉक एंड रोल और दावत थी और उन्होंने पास्टर का साक्षात्कार लिया। उसने कहा बहुत समय हो गया कि मेथोडिस्ट रॉक एंड रोल की सुंदर कला भूल गया। प्रेत ग्रस्त परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते, जैसे जंगली लोग मिस्री योद्धा के विषय में नहीं जानते। वे परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते। वे बस जैसे खरगोश बर्फ के जूतों को नहीं जानता, उससे अधिक नहीं। जब आप उस स्थान पर आते हैं जहां पर आप केवल धर्म विज्ञान जानते हैं, मनुष्य द्वारा बनाया गया मत्सार, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है, आप परमेश्वर के नबी को स्वीकार करते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उपहार को स्वीकार करते हैं। आप देखिए कलीसिया में रॉक एंड रोल कितना हो सकता है। आप उस समाचार पर वापस जाएं जो जॉन वेस्ली ने प्रचारा और देखिए आप इसे कितना अंदर पा सकते हैं। पिटे हुए मार्गों से अलग हो जाएं, जॉन स्मिथ पर वापस जाएं या बैप्टिस्ट मार्टिन लूथर पर वापस जाएं। परंतु ये क्या है? आज वे अलौकिक के विषय में कुछ नहीं जानते। ये ठीक बात है। मेथोडिस्ट कलीसिया दिव्य चंगाई के विषय में कुछ नहीं जानता। जब जॉन वहाँ खड़ा हुआ दिव्य चंगाई प्रचार कर रहा था, चर्च ऑफ इंग्लैंड का कोई विशिष्ट व्यक्ति आया और उसका उपहास उड़ाया, एक लोमड़ी छोड़ दी और शिकारी कुत्तों का झुंड। उसने अपनी उंगली उसके मुख की ओर की और कहा, सूर्य तुम्हारे सिर से उतर कर न डूबेगा। वो उसी सांझ को मर गया। जॉन को बुला रहा था कि उसके लिए प्रार्थना करे। क्यों नहीं मेथोडिस्ट कलीसिया उसमें वापस नहीं आ जाती? क्यों? क्योंकि ये मृत है। ठीक है, आप उसी गठरी में झांकने से डरते हैं क्योंकि ये आपके पापों को प्रकट कर देगा। आप मेथोडिस्टों को पुकारता हूँ कि मुड़कर इस गठरी में फिर से देखें। मैं बैप्टिस्टों को पुकारता हूँ कि मुड़कर फिर इस गठरी में देखें, और प्रेस्बिटेरियनों को और सब तुम पेंतेकोस्टलों कैथोलिकों और सब परमेश्वर के बड़े दिन के उपहार को अब मुड़कर देखो, वर्तमान को मुड़कर देखो, उन डिब्बों को फेंक दो और उपहार को ले लो। यही है सांता क्लॉज की चमक दमक से अलग रहो, परमेश्वर के उपहार पर वापस आओ, पवित्र आत्मा पर वापस आओ। ओ, मैं जानता हूँ ये बहुत सी बातें प्रकट करेगा, परंतु यही वो है जिसकी आपको आवश्यकता है, एक सफाई, एक रगड़ाई कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत कठोर है लोगों, परंतु हमें इसे लेना ही है। ये परमेश्वर का वचन है। जी हाँ श्रीमान, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। वे ये जानते थे कि वहाँ उस नगर में जब वो पहुँचे वहाँ कुछ गड़बड़ थी और ज्योति चली गई। जैसे ही उन्होंने नामधारी की सदस्यता ली, ज्योति चली गई। क्या मामला है? उन्होंने चिल्लाना आरंभ किया, कहाँ है वो, कहाँ है वो? निश्चय ही मैं उसे यहाँ पाऊंगा। ये पुराना नामधारी है, यह बहुत समय से है, ये नामधारियों की राजधानी है, वेटिकन नगर। हाँ, निश्चय ही मुझे उसे यही ढूंढना चाहिए। कहाँ है वो, कहाँ है वो मसीह जिसने कहा कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है? कहाँ है वो एक जिसने कहा कि सांझ के समय उजियाला होगा? कहाँ है वो जिसने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे? कहाँ है वो, कहाँ है वो? और बाहर ही रुक गई। जब वे वहाँ से बाहर आए, उस नगर से बाहर आए, ज्योति वहाँ फिर प्रकट हो गई। सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग तुम निश्चय ही पाओगे, उस जल के मार्ग से आज उजियाला है। यीशु के बहुमूल्य नाम में दफन हो जाओ। युवा और बूढ़े, अपने सारे पापों से प्रायश्चित करो, पवित्र आत्मा निश्चय ही भीतर प्रवेश करेगा। सांझ का उजियाला आ गया है, ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है। हाँ भाई, हाँ श्रीमान, अपने सारे पापों से प्रायश्चित करो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का उपहार निश्चय ही भीतर आएगा। वो द्वार पर है, कहता है मुझे भीतर आने दो, यदि तुम मुझे अंदर आने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। मैं ये बातें तुम लोगों पर प्रकट करूंगा, मैं तुम्हें अलौकिक दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, मैं इन सब बातों की चिंता तुम्हारे लिए करूंगा यदि तुम मुझे अंदर आने दोगे। परमेश्वर का उपहार आज पवित्र आत्मा के रूप में लिपटा हुआ है। उस समय ये लिपटा हुआ परमेश्वर का पुत्र कहलाया था। परमेश्वर के उपहार की गठरी फिर से ले ली गई और फिर लपेटी गई और वापस भेजा गया। आमीन। ये परमेश्वर के पुत्र में उस समय लपेटा गया, इस समय ये परमेश्वर के पुत्रों में लपेटा गया और कलीसिया कहलाया। ये ठीक बात है, परमेश्वर के उपहार की गठरी लिपटी हुई है लोगों के लिए, और आज उन्होंने इसका इनकार कर दिया जैसे तब इसका इनकार किया गया। यदि उन्होंने घर के स्वामी को बालजबूब कहा, एक भविष्य बताने वाला, क्योंकि वो विचारों को परख सकता था, तो फिर वो आपको कितना करेगा। उन्होंने घर के स्वामी को कहा, ओ हम इसे ढूंढे। जी हाँ, ज्योतिषियों ने, उन्होंने इसे स्वीकार किया, वे निर्धन और नम्र थे और उन्होंने अनोखी ज्योति देखी। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, बाइबल ने कहा जब उन्होंने ये ज्योति देखी तो बहुत प्रसन्न हुए, वो लोग बहुत ही आनंदित हुए। ओ मैं कल्पना करता हूँ वो थोड़ा बहुत चिल्लाए, क्या आप ऐसी कल्पना नहीं करते? मैं बस ऐसी कल्पना करता हूँ। इसलिए जब उन्होंने देखा तो वे लंबे समय से संस्था में थे, कुछ ढूंढने का यत्न कर रहे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वे फाटक के बाहर निकल गए तब उन्होंने पवित्र आत्मा की ज्योति को फिर से देखा कि वो चमक रही है, वो महिमा का तारा उन पर नीचे आ रहा था। वे आनंदित हो गए, वे यहाँ आनंद से भर गए। ओ, लोग तब क्या करते हैं जब वे आनंद से भर जाते हैं, जब गेंद का खेल लोगों में आनंद से भर जाता है, तब वे लोग क्या करते हैं? ओ आप हुर्रे हुर्रे करके शोर मचाते, हल्ला गुल्ला, हा 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 हो घर की ओर दौड़ते हैं, समझे? और जब आपको बड़ा महान आनंद मिलता है और आनंद से चिल्लाना महिमा हल्लेलुया, प्रभु की महिमा हो, ये ठीक बात है, महान हर्षोल्लास। वहाँ एक तारा हमारी अगुवाई करता है जो हमें इन संस्थानों से बाहर लाता है और हमें सिद्ध उजाले की ओर लाता है। बस बढ़ते जाएं, ये तारा उजियाले के लिए अगुवा है, अंततः ये बालक पर ठहर जाता है और थोड़ी सी मिनटों में, ठीक है, ठीक है, उसने स्वयं को बेचारे मछुआरों पर प्रकट किया, वो प्रकट हो गया, वो गठरी उसके भीतर क्या था, ये निर्धन मछुआरों पर प्रकट हुआ, उन अशिक्षित अनाड़ियों पर। उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, वे डीकन नहीं हो सकते थे या कलीसिया में कुछ और, वे वो नहीं हो सकते थे, वे इतने अनाड़ी थे, ओ वे इतने भद्दे थे। इसलिए उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया जिन्हें चाहा नहीं गया, उन पर जो बाहर निकाले गए थे, उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया, घृणतों पर, वो उनके लिए प्रेम योग्य है जिनसे प्रेम नहीं किया गया, बीमारों पर उन्हें चंगाई की आवश्यकता है। वे उस गठरी के भीतर देखना चाहते थे कि देखें क्या है, उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया, और भूखों को उसने रोटी मछली खिलाई। ओ मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम इस पर टिक सकते हैं, परंतु हमें ये छोड़ना है, समझे। स्वयं को उन लोगों पर प्रकट किया जो प्रेम के योग्य नहीं थे, जब कोई भी उन्हें नहीं चाहता था, उन्हें धर्म भीरु कहा, वो उन पर स्वयं प्रकट हो गया। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। जी हाँ श्रीमान, तिरस्कृत, छोड़े हुए, बीमार और निर्धन, भूखे, उसने स्वयं को प्रकट किया। जी हाँ, मैं एक और भूखे व्यक्ति के विषय में सोच रहा था। एक दिन एक भूखे हृदय का व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस था, तब शाऊल था, भूखा दमिश्क की राह पर जा रहा था। वो नहीं जानता था कि वो क्या करे, वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने स्वयं को भूखे हृदय वाले शाऊल पर प्रकट किया। उस बदनाम स्त्री पर, दोषी बरब्बा पर, उसने स्वयं को प्रकट किया। ठीक बात है, भूखे हृदय वाले मनुष्य पर, बदनाम स्त्री पर, उन सब पर जो निकाले हुए थे। मैं उस बदनाम स्त्री के विषय में सोचता हूँ, एक क्षण उसके लिए मेरे साथ एक मिनट और सहन करें। ओ बाइबल में शमौन फरीसी, वो चाहता था कि वो भी इस वरदान को जानना चाहता था, परंतु वो अपनी इच्छा से जानना चाहता था, उसका स्वयं का उद्देश्य। वो फरीसी, उसने क्या किया, उसका एक बड़ा भोज, उसने सोचा वो कुछ उपहास कर सकता था। बाइबल सुसमाचार की कथा, ये हमें दो एक मिनट के लिए अब इसे देखें, इससे पहले कि हम बंद करें। वहाँ उसने कहा वो चाहता है कि यीशु आए, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि वो वास्तव में यीशु से प्रेम करता था, क्योंकि उसके पास कुछ भी साधारण नहीं था। वो पुराना घमंडी फरीसी था और उसने यीशु से घृणा की, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे वहाँ पर बुलाएगा और उस पर कुछ करे कि देखें कि वो वास्तव में भविष्यद्वक्ता है या नहीं। इसलिए उसे नेवते पर बुलाया गया, हरकारा आया और चला गया, संभवतः धूल से भरा और सब कुछ वहाँ पहुँच गया और एक ओर खड़ा हो गया। संभवतः यीशु लोगों को चंगा कर रहा हो और सब चल रहा हो, वो थका हुआ था। अंततः हो सकता है पतरस ने कहा कि आप उससे आज नहीं मिल सकते। उसने कहा परंतु श्रीमान, मेरा स्वामी शमौन रब्बी है, वो यहाँ यहूदियों में बड़ी कलीसिया का पास्टर है, क्यों आप, उसने आपके स्वामी को दावत में बुलाया है कि उससे मिले। ओ उसके लिए ये बहुत बड़ा नाम होगा, समझे, आपको उससे मिलना चाहिए। ठीक है, उसने कहा मैं आपको ले चलूंगा और देखिए वो क्या कहता है। और इसलिए वो भीड़ में घुसा और सूर्य लगभग डूबने पर था, यीशु थका मांदा हुआ था और यहाँ ये छोटा संदेश लाने वाला, और वो बजाय मसीह की उपस्थिति में। ओ मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि उस संदेश वाहक के साथ क्या मामला था, उसके साथ क्या गड़बड़ी थी जो यीशु के समीप खड़ा था और अब भी फरीसी का संदेश उसके पास था। मेरा स्वामी चाहता है कि आप आकर उससे भेंट करें, आप जानते हैं उसने वहाँ दावत दी है, आप सम्मानित अतिथि होकर आए। ओ मेरी इच्छा ये है कि मैं संदेश को ले सकता कि उसके इतना समीप, क्या आप नहीं चाहते। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि फरीसी ने क्या कहा। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ता, कहता ओ प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मैं एक पापी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं यही कहता, क्या आप नहीं। वो कैसे यीशु के इतने समीप खड़ा हुआ और अपने पापों की क्षमा का सौभाग्य से मुकर गया और उसके इतने पास नहीं, उसके मस्तिष्क में बहुत बोझ था, वो दास था, उसे फरीसी के लिए निवेदन करना था। और यीशु, बेचारा यीशु, जब वो बहुत थका हुआ श्रमित और ये जान गया कि वो उससे तुच्छ समझता है, घृणा करता है, फिर भी अपना सिर हिलाया, मैं वहाँ होऊंगा। जब वो कहता है मैं वहाँ होऊंगा तो वो वहाँ होता है, आप चिंता न करें, वो वहाँ पर होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए जब वे वहाँ पहुँचे उस दिन और उन्होंने अपने मोटे मोटे बछड़े मारे और अपनी नई मदिरा निकाल ले आए और सब कुछ, और गरीब लोगों का अनुमति नहीं थी कि जहाँ वे हैं आसपास आए, वो जब उन्होंने उस मांस को बाहर से तला, उसमें से क्या ही महक आई, वे बेचारे लोग बाहर खड़े थे, उनके मुंह में पानी आ रहा था, वे भीतर नहीं आ सकते थे। नहीं श्रीमान, फिर भी वो केवल उत्सव मनाने के लिए था, और इसलिए फिर बाहर खड़े हुए और उनके पास ये सारे अंगूर और चीजें उस समय के चढ़ावे पर था, अंगूर की बाहर और अंगूरों की सुंदर महक, आप जानते हैं वे सब पके हुए होते हैं और सब कुछ उसके पास, उसकी नई मदिरा और सब कुछ था। और मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि कैसे यीशु उनके बिना ध्यान में आए हुए अंदर चला आया। आप अच्छी तरह जानते हैं, पुराने समय में जब कोई किसी को बुलाता था तो उनके घर में आए, आप जानते हैं कि वे लोग अवभगत में महान लोग थे। अब लोग उन दिनों में वे चप्पलें पहनकर चलते थे, और जब उन्होंने आपने उनके पांव धोने के विषय में सुना है, यही जो हम यहाँ पर करते हैं उसके स्मरण में, ये एक विधि थी। जब आपसे कोई कहता कि आप उनके घर आएं, ये कुछ इस प्रकार से होगा, वे दरवाजे पर आपका अभिवादन करेंगे, और फिर उनके पास वो था जो वे कहते हैं सबसे नीचा कार्य सब लोगों का। उनमें से कुछ ने रथ चलाए, कुछ ने खाना बनाया, और उनमें से कुछ रसोइये, आप जानते हैं, और उनमें से कुछ खनसामा, परंतु उस घराने का सबसे कम मजदूरी वाला पैर धोने वाले की चाकरी, वो बस एक सेवक था। मैं सोचता हूँ मेरा प्रभु पैर धोने वाला सेवक, और तब हम कुछ समझते हैं, हम समझते हैं कि हम कुछ हैं। उसे देखिए, चेलों के पैर धो रहा है, मछुआरे, गंदे मछुआरे, भेड़ चराने वाले और आदि आदि, उनके पैर धोए। और यहाँ वो पैर धोने वाला दास, जब आप दरवाजे पर आते हैं, वे आपके पैर को धोते हैं, क्योंकि धूल आदि आपके पैरों पर है। और आप जानते हैं जहाँ जहाँ आप चले हैं, उन धूल भरी सड़कों पर जहाँ घोड़े और पशु थे, आप जानते हैं, और ये आप में बदबू कर देता है। और फिर वो सूरज, आप जानते हैं, आपकी सारी गर्दन पर, और फिलिस्तीन का सूर्य सीधी किरणों वास्तव में गर्म होती हैं। इसलिए जब वे द्वार पर आते हैं, वे अपने पैरों को बाहर निकालते हैं, वे उनके पैरों को धोएंगे, और फिर अपनी चप्पलों को पहनेंगे, उन्हें साफ करेंगे, उन्हें बैठाएंगे, और उन्हें छोटी चप्पलों का जोड़ा पहनाएंगे, जैसी आजकल महिला शयन कक्ष में छोटी चप्पलें पहनती हैं। आप जानते हैं, कुछ इसी प्रकार से उन्हें पहनाते हैं, और फिर उनके पैर धोते हैं, और फिर उनके कंधे पर तौलिया होता होगा, और फिर वो क्या करेगा, वो उसके मुख पर से धूल पोंछेगा, और कुछ जटामासी का तेल लेकर, ओ ये महंगा सामान धनी लोग प्रयोग करते हैं। दक्षिण की रानी इसमें से कुछ लाई थी और सुलेमान को दिया, सेब से पूरी देश में बनाया जाता है जैसे फूल, और वहाँ से लिया, बहुत ही बहुमूल्य। और वे उस जटामासी के तेल को लेते और उनके मुंह पर लगाते, कुछ तेल जैसा, क्योंकि उनकी गर्दन झुलस जाती, और आदि आदि, तौलिया से सब पोंछते इस प्रकार से, और फिर से वे ताजे हो जाते। अब ये पहली चीज होती कि पांव धोने वाला दास उन्हें लेता और इस प्रकार से तैयार करता। निश्चय ही वे किसी के घर में इस प्रकार से नहीं आना चाहेंगे, जहाँ वे बड़े फारस के गलीचे और आदि आदि, इस प्रकार से जहाँ वे घुड़साल की गंध छोड़ रहे हों, और सूर्य से झुलसे उनके चेहरे, वे ताजे हो गए थे। जब वे भीतर आए, वे एक दूसरे से मिले। जब वे आए तो अतिथि का सदा सत्कार हुआ। भाई एड, जब यदि आप आते हैं तो वे इस प्रकार से अपने हाथ मिलाते हैं, वे अपने हाथ इस प्रकार से मिलाते हैं, और फिर वे अपना एक मिनट के लिए खड़े होकर, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, वे अपने हाथ एक दूसरे के चारों ओर डालते इस प्रकार से, फिर अपने हाथ बदलते, और इस प्रकार से उन्होंने किया। ये स्वागत था। तब आप एक भाई थे, आप अच्छा अनुभव करते, आपके पांव धुले हुए थे, आप पूरी रीति से अभिषेक्त हैं। अगली चीज जो उन्होंने किया, वे एक दूसरे को गर्दन पर चुंबन करते और उनका स्वागत करते। अंतिम चीज स्वागत का चुंबन। स्मरण रखें, यहूदा ने यीशु को वही स्वागत का चुंबन दे रहा था, कहा मित्र तूने यह क्यों किया, समझे, वो उसके हृदय को जानता था। इस प्रकार वे एक दूसरे का स्वागत करते। आप अपने ऊपर धूल लिए अंदर आना नहीं चाहेंगे, आपके चेहरे पैरों पर गंध आदि आदि, वे पुराने वस्त्र जब आप चलते हैं धूल पकड़ लेते हैं, जब आप चल रहे हैं उनका अंदर जाने को मन नहीं हुआ, परंतु जब पूरी रीति से ताजे हो गए, और तब जब वो आया और आपका अतिथि, आप आदरणीय अतिथि थे, और फिर जब आप आते हैं तो उसने आपका स्वागत किया, गर्दन पर आपको चुम्बन किया, क्यों, तब आप भाई थे। अंदर आइए, आप रेफ्रिजरेटर के पास जाते हैं, आपके लिए सैंडविच या कुछ लाते हैं, तब आपका स्वागत हुआ, आपका स्वागत हुआ। परंतु यीशु कैसे उसके संग बिना ये सब किए कभी अंदर चला गया, समझे, वो वहाँ कोने में बैठा हुआ था बिना स्वागत के, गंदे पैरों के साथ। संभवतः फरीसी किसी और चीज पर बातें कर रहे हों, आप जानते हैं, उसने कभी भी यीशु अंदर आते पर ध्यान नहीं दिया। आज कलीसियों में यही मामला है, हमारे बहुत सारे फरीसी कलीसियाएं, परमेश्वर की सामर्थ भीतर आती है और वे इस पर ध्यान नहीं देते, समझे, वो कुछ करना चाहता होगा परंतु उसका कभी भी स्वागत नहीं हुआ। और वहाँ वो था, संभव है कोई चुटकुला सुना रहा हो, और पास्टर रब्बी के साथ बड़ा अच्छा समय, और आदि आदि, और अमुक रब्बी वहाँ, उन्होंने यीशु पर ध्यान नहीं दिया, और वो अंदर चला गया होगा और कहीं बैठ गया होगा एक कोने में। मैं उसे गंदे पैरों, झुलसी हुई गर्दन, बिना स्वागत के चुम्बन के देख सकता हूँ, और क्या आपको अजीब अनुभूति नहीं होती, यीशु गंदे पैरों के साथ। वे वहाँ उसे जेजू जेजू पुकारते थे, कहा जेजू गंदे पैरों के साथ कोने में बैठा हुआ है, ओ परमेश्वर, ये कभी कैसे हो सकता है, उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। परंतु एक छोटी वैश्या, ओ प्रभु, एक बदनाम स्त्री, वो वहाँ से निकली, संभव है, संभवतः वो थी, वहाँ नगर में कोई नहीं था, हर कोई इस भोज में गया होगा, सारे उत्सव, इसलिए उसका धंधा मंदा था, इसलिए उसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ फरीसी के घर के आसपास। इसलिए वो वहाँ गई और हो सकता है कि कनात की दरार में से देखा, चारों ओर देखा। ओ प्रभु, ऐसा हुआ कि उसने कोने में देखा, उसने उसे वहाँ कोने में बैठे हुए देखा, उसने उसे सिर झुकाए बैठे देखा, गंदे पैर, गर्दन झुलसी हुई, बिना स्वागत के। उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु उस पर ये प्रकट हुआ था। ओ, मैं उसे आंखें मलते हुए देख सकता हूँ और बोली, क्या ये वो है? ये वही मनुष्य है जिसने मुझ जैसी एक स्त्री को बचाया एक समय जब वो कलीसिया के द्वारा खींच कर ले जाई गई थी और उसे पथराव किया जाने वाला था कि मर जाए। उसने कहा, स्त्री, तुझे दोषी ठहराने वाले कहाँ हैं? ये वही होना चाहिए, समझे? विश्वास सुनने से आता है, और उस पर ये प्रकट हुआ कि ये वो था। उसने कहा, परंतु देखिए, वो बिना स्वागत के, उसके गंदे पैर, मैं इस विषय में क्या कर सकती हूँ? मैं स्त्री हूँ, और यदि ऐसा हुआ कि मैं अंदर गई और कुछ कहा कि वो मुझे बाहर फेंक देंगे, उन सलाखों पर से फेंक देंगे। और अब मैं एक स्त्री हूँ, एक बदनाम, और वो जान जाएगा कि मैं बदनाम स्त्री हूँ, इसलिए मैं इस विषय में क्या कर सकती हूँ? मैं उसे मुड़ते हुए देख सकता हूँ। ओ, मुझे कुछ करना है। वो बिना स्वागत के, परंतु मुझ पर कुछ प्रकट हुआ है कि यही केवल एक मार्ग है जिससे मुझे कभी जीवन मिलेगा। भाई, आप यही हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इस गठरी में क्या है। मैं जानती हूँ उसमें कुछ है जो मेरे पापों को क्षमा कर देगा। यद्यपि मैं एक वैश्य हूँ, यद्यपि मैं बुरी हूँ, मैं उस बड़े दिन की गठरी में देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उसमें मेरे लिए कुछ है। वहाँ हरेक के लिए कुछ है, पापी मित्र, ये ठीक बात है। वहाँ ज्वारी के लिए कुछ है, वहाँ झूठ के लिए कुछ है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ है। इस बड़े दिन की गठरी में आपके लिए कुछ है, इसे एक और ना रख दें। कैसे फरीसी मूर्ख, मंद बुद्धि, चमकीले को लेकर और उपहार फेंक दिया, कितनी दयनीय बात है। यहाँ वो आता है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, और ये बेचारी स्त्री, वो वहाँ से चली गई जहाँ वो रहती थी, और वहाँ उन पुराने आवाज करने वाली सीढ़ियाँ, उसके बक्से में धन, बहुमूल्य वस्तु या कुछ और पैसे लिए। उसने कहा, ओह, मैं क्या कर सकती हूँ? अब एक मिनट रुकिए, ठीक है, मैं इसे वापस रखती हूँ, क्योंकि वो जान जाएगा कि मैं एक बदनाम स्त्री हूँ, परंतु मेरी केवल यही आशा है, केवल यही है जो मैं कर सकती हूँ। मुझे भोज में कोई नेवता नहीं है, परंतु फिर भी मुझे उसके पास पहुँचना है। मैं चाहता हूँ कि आज रात्रि लोग इसे देख सकें, उसके पास चले जाएं या नष्ट हो जाएं, इससे क्या अंतर पड़ता है? आप पवित्र शोर करने वाले या बाहर निकाले हुए कहलाएं, क्या अंतर पड़ता है? उसके पास पहुंच जाओ, आपकी केवल यही आशा है। इसीलिए वो नीचे बाहर चली गई। मैं एक को देख सकता हूँ, वे यहूदी लोग वहाँ कह रहे हैं, व्यापार मंदा है, वहाँ बैठे हुए अपने पैसे गिन रहा है, हर कोई भोज में गया है, और आदि आदि। ये स्त्री भीतर गई। अच्छा, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? उसने सामने काउंटर पर अपने रोमी सिक्के पलटे, लगभग 30 सिक्के। आहा, महिला, आप क्या चाहती हैं? देखिए, इससे अंतर पड़ता है। उसने देख लिया वो क्या थी, परंतु जब देख लिया कि उसके पास कुछ पैसे हैं, तो ये भिन्न है, समझे? संसार आज यही है, आपके पास पैसा है, आप बड़े व्यक्ति हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ नहीं। ओह, ये अंतर है। आप क्या चाहती हैं? मैं सबसे बढ़िया वाला इत्र चाहती हूँ, मेरे पास यही है। मैं इन्हें गिन लूँ, 30 सिक्के, 40 थे। ओह हाँ, ये यहाँ सबसे अच्छी बोतल खरीद लेगी, मैं ये चाहती हूँ। आपका अर्थ, आप तेल चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, मैं पूरी बोतल चाहती हूँ। उसके पास केवल इतना ही था। भाई, यही है जो आपको करना है। यह आपके प्रत्येक पाप का दाम है, यह हर चीज का दाम है, परंतु इसे देने की इच्छा करें। इसलिए वो बार तक पहुंची, उसे अंदर देखते हुए देखता हूँ, वो उसे वहाँ बैठे हुए देख रही थी, अब भी अछूता। फरीसी पास्टर अब भी गंदे चुटकुले आदि सुना रहा है, उन सब बाकियों के साथ चल रहा है, कहीं किसी बड़ी बात की चर्चा नहीं मालूम, हमारे बहुमूल्य प्रभु पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं कैसे भीतर आ सकती हूँ? इसलिए अब मैं देखता हूँ, वो सरलता से भीतर चली गई, वहाँ पहुँची जहाँ इस प्रकार था, और उसने उसकी ओर देखा। मैं देख सकता हूँ आंसू उसके मुख पर से नीचे आ रहे थे, और उसकी बड़ी बड़ी आँखें और इस प्रकार से देख रही थी, और उसने बोतल को जोर से मारा, इत्र बाहर आ गया, उसके पैरों पर डाला। वो यीशु को गंदे पैरों के साथ बैठे नहीं रहना देना चाहती। आप कहते हैं, मैं भी नहीं चाहूंगा, तो फिर इस विषय में क्यों नहीं कुछ करते? आज राष्ट्र में वहाँ उसका बुरा नाम है, पवित्र शोर करने वाले, धर्मांध। आप इस विषय में क्यों नहीं कुछ करते? खड़े हों और कहें, मैं प्रभु के लिए थोड़े से ठुकराए हुए लोगों का के साथ मार दूंगा। इस गठरी को मैं लेने को तैयार हूँ। उसने वो तेल उसके पैरों पर डाल दिया, उससे सारा घर महक गया। ये बहुमूल्य था, यीशु के लिए कुछ भी बहुत अच्छा नहीं। उसे अपना सबसे अच्छा दें, जो भी आपके पास है उसे सब दें। अपना जीवन, अपना प्राण, अपना जीव, अपना समय, वो सब जो आपके पास है उसे दें। उसने देखा वो वहाँ पर खड़ी थी, ओ, उसने वो तेल उसके सर पर उंडेल दिया और फिर उसके पैरों की तरफ झुकी और आरंभ कर दिया। उसने उसके पांव उठाए और देखा कि वे गंदे हैं, उसके पास कुछ नहीं था। और फिर वो अपने पापों के विषय में सोचने लगी। उसने कहा निश्चय ही वो मुझे दोषी ठहराएगा। इसलिए जब उसने उसकी गर्दन पर तेल डाला और उसे मला और फिर नीचे झुकी और उसके पैर पकड़ लिए और वो गिर पड़ी और रोने लगी, और मैं ऐसी पापी हूँ कि इस मनुष्य के सामने खड़ी हूँ, मैं ऐसी पापी हूँ। और उसने ऊपर देखा, उसकी बड़ी सुंदर आंखें, उसने सोचा कि वो मुझे इस कमरे में से बाहर कर देगा, परंतु वो बिल्कुल नहीं हिला, वो बस बैठा रहा। और उसे देखा, ओ मुझे ये पसंद है, वो बस बैठा हुआ उसे देखता रहा। ओ वो मेरे हृदय को जानता है, मैं अनुभव कर सकती हूँ, वो मेरे मस्तिष्क में पड़ रहा है, वो जानता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, प्रभु मैं जानती हूँ, परंतु मैं खड़े हुए आपको गंदे पैरों के साथ नहीं देख सकती, मैं इसे सहन नहीं कर सकती, केवल आप ही मेरी आशा है, मैं खड़ी हुई नहीं रह सकती। उसके पैरों के लिए क्या ही सुंदर जल, ओह प्रायश्चित के आंसू, ओह वो बूढ़ा फरीसी इस प्रकार का कुछ भी नहीं दे सकता था। पानी आंसू उसके गालों पर से लुढ़क रहे थे और वे उन्हें रगड़ने लगी, उसके पैरों को चूम रही थी। ओ वो उसका प्रभु है, उसके पैरों को चूम रही है, उसके पास नहीं है, उसके पास पहुंचने के लिए तौलिया नहीं है। मैं उसके बालों का अनुमान लगाता हूँ, उसने अपने सिर से ये किया, नीचे गिर गई होगी। उसने अपने बाल लिए और उनसे उसके पैरों को पोंछने लगी और उसके पैरों को चूमने लगी। प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं मैं पापी हूँ, इस प्रकार से आपके सामने आना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं आपको गंदे पैरों के साथ नहीं देख सकती। ओ प्रभु यीशु, गंदे पैरों के साथ बिना स्वागत, उसकी गर्दन पर कोई चुम्बन नहीं, वो उसके पैरों को चूम रही है। प्रभु मेरे प्रभु, ओ प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु आप जानते हैं मैं हूँ। उस समय के लगभग बूढ़ा फरीसी घूमा, ओ कहा अब उधर देखो, उधर देखो, इस प्रकार की संगति जो कि पवित्र आत्मा कहलाता है, समझे, वे बदले नहीं। देखिए ये क्या है, देखो किस प्रकार के लोगों के साथ संबंध है। उस पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं और दिव्य चंगाई, ये क्या है, नगर का कूड़ा। निश्चय ही वो जिस पर ये प्रकट हो, वो जानती थी कि उस बंडल में क्या है, वो जानती है कि ये केवल यही समय है कि वो उसे और किसी समय में कभी पाए। वो फरीसी के पास नहीं जा सकती थी, वो उसे कलीसिया से बाहर निकाल देगा, उनके सामाजिक स्तर में नहीं, परंतु वहाँ एक पापियों के लिए समाज है, मैं उसके लिए आनंदित हूँ। एक स्थान है जहाँ पापी आ सकते हैं, गिलाद का बाम है, वो घावों को भर देगा। उसने ये पा लिया था, वो इस उपहार को जानती थी और वो उसके पैरों को चूम रही थी। बूढ़े फरीसी ने कहा, हाँ यहाँ आओ लड़को, ओ वो तुम्हारा नबी है, समझे। यदि वो किसी भी प्रकार का भविष्य रखता होता तो वो जान जाता कि वो स्त्री जो उसके पांव धो रही है किस प्रकार की है। उधर देखो, धर्मांधता के विषय में बातें करते हो, इसने मेरे घर को अशोभनीय कर दिया। यीशु ने कभी भी एक शब्द कहा, बस खड़े हुए और स्त्री को देखा। इसलिए कुछ देर बाद वो जानता है कि वो फरीसी किस शुद्धता पर सोच रहा है, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ। वो स्त्री, मैं उसे देख सकता हूँ, ओह ये मेरा समय है, वो मुझे दोषी ठहराएगा, वो मुझे इस घर से बाहर भगा देगा। मैं उसे खड़े हुए देख रहा हूँ, इस प्रकार से देखता है, उसे सब अच्छा अनुभव हो रहा है, उसके पैर आंसुओं से भीगे हैं, ओ परमेश्वर मुझे बना, उसके पांव प्रायश्चित के आंसुओं से भीगे हैं। एक सच्चा हृदय यद्यपि चरित्रहीन जैसे कि वो थी, यही समय था कि वो उस सोते के पास थी जहाँ धोई जा सकती थी। वो बैठी हुई है उसके मुख पर, मैं उसके आंसुओं के धब्बे देख सकता हूँ, इस प्रकार से सारे में धब्बे हैं, उसके बाल नीचे पड़े हैं, आंसुओं से भरे हैं, उसके पैरों की धूल से वो वहाँ अचंभित खड़ी है। क्या होने जा रहा है, वो मुझे बाहर फेंक देगा, वो उनसे मुझे यहाँ आने के लिए कैद में डलवा देगा। वो इस प्रकार से खड़ा हुआ, उसने कहा, शमाउन मुझे तुझसे कुछ कहना है। तूने मुझे अपने घर पर न्योता दिया और जब मैं अंदर आया तूने मुझे कभी भी पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, मैं स्वयं अपने पैर धो लेता, परंतु तूने मुझे पानी नहीं दिया। ओ परमेश्वर, तूने मुझे गर्दन पर लगाने के लिए तेल नहीं दिया जबकि ये जल रही थी, तूने ये नहीं किया शमाउन, ना ही तूने मुझे चूमा और मेरा स्वागत किया। परंतु ये स्त्री, उसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए और मेरे पैर चूमे, जब से वो आई है वो निरंतर कर रही है। तेरे विरोध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं शमाऊन, परंतु ये भविष्यद्वक्ता था या नहीं, मैं उससे कहता हूँ उसके बहुत से पाप क्षमा हो गए। ओ परमेश्वर, ये क्या था? उस उपहार की गठरी में क्या था? उसे मिल गया, उसने पाया कि वहाँ प्रेम था, उसने पाया कि वहाँ क्षमा थी, उसके पास ये था। ओ कैसे उसने परमेश्वर के बहुमूल्य उपहार को उसमें कार्य करते देखा। उसे कैसा अनुभव होना चाहिए जब उसने देखा कि परमेश्वर का उपहार उस तक पहुंचा था, उसके पाप क्षमा हो गए थे। उस दिन बरब्बा को कैसा लगा होगा? आप बरब्बा की कहानी जानते हैं। बरब्बा कानून का पकड़ा हुआ अपराधी, उसे बंधुआई में डाला गया था, अगली प्रातः वो मरने वाला था। वो चोर था, वो बहिष्कृत था, वो खूनी था, वो अपराधी था। वो सारी रात जेल में इधर उधर चहलकदमी करता रहा, अपने बालों को खींच रहा था। अगले प्रातः उसे क्रूस पर जाना था, फांसी की सजा, वो मर जाएगा। उस रात्रि उस पर कैसा भय रहा, वो कैसा विश्राम कर सकता था? अगली प्रातः कोई नाश्ता नहीं या कुछ नहीं जानता, उसका लहू बह जाएगा जैसे कि भेड़ियों के बीच में होगा। अचानक से उसने जंजीरों की आवाज सुनी, सिपाहियों के कदम, यहाँ चार पांच आते हैं और संभव है रोमी सिपाहियों का जत्था चमकीले भाले वहाँ पहुँचे। बड़े जेलर ने चाबियां घुमाई और कहा, बरब्बा बाहर आओ। ओ मुझे ना मारो, दया करो, बरब्बा कुछ भी खराब नहीं, तुम स्वतंत्र हो। मैं क्या? तुम स्वतंत्र हो? मैं कैसे स्वतंत्र हो गया? किसी ने संकेत किया उस और बरब्बा का, इसके लिए क्या अर्थ होगा? जब उसने उपहार को देखा कि मृत्यु में उसका क्या स्थान ले लिया था, मुझे भी यही अनुभव हुआ। परमेश्वर के उपहार ने मृत्यु में मेरा स्थान ले लिया। कैसे वे मरते हुए चोर क्रूस पर कीलों से टांगे गए, मरते हुए चोर ने आनंद से देखा उस सत्य को अपने दिन में, वहाँ मैं हूँ, यद्यपि जैसे नीचे हुआ मेरे सारे पापों को धो दिया। जब से मैंने उस धार को देखा जो मुझ पर प्रकट हुई, तेरे बहते हुए घावों से मिला छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय और रहेगा जब तक मैं मरूं। ये ठीक बात है। बंद करते हुए ये कह सकता हूँ, बड़े दिन का अर्थ ऊंटों का डिब्बा, वॉयसराय का डिब्बा, एक बोतल चार गुलाबों की या सीग्रम सुंदर सांता क्लॉस के कागज में लिपटा हुआ, परंतु वे अब भी परमेश्वर के उपहार का इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अब भी बड़े दिन के उपहार को नकार दिया। वे इसे नहीं चाहते, मैं इसे चाहता हूँ। मैं आनंदित हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया। ओ इमैनुएल, परमेश्वर देह में हमारे बीच रहा, तिरस्कृत और छोड़ा हुआ इन सारे युगों में, उसका अनुग्रह आज हर हृदय तक आया जो इसे स्वीकार करेगा। हम क्षण भर के लिए अपने सिरों को झुकाएं। मैं आज रात्रि आश्चर्य में, बड़े दिन के समय इस भवन में, लगभग 2000 वर्ष पहले के स्मरण में, जब परमेश्वर ने अपना पहला बड़े दिन का उपहार दिया। आज रात्रि मुझे आश्चर्य है, यदि आप इस गठरी के भीतर देखना चाहेंगे और देखें पापी कि उसमें और कोई नहीं जो आपसे प्रेम करता है, कोई जो आपके लिए मरा, कोई जिसने अपना जीवन आपके लिए दिया। क्या आज रात्रि आप चाहते हैं कि उस पर से जानवर वाला कपड़ा उतार लें, वो गंदा कपड़ा जो वे उसे कहते हैं धर्म भीरु, पवित्र शोर करने वाले, स्वयं को इसमें लपेट लें और प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुओं के साथ मार्ग लें। यदि आज रात्रि इस भवन में चाहते हैं कि आपको प्रार्थना में स्मरण किया जाए, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, कहें आज के बड़े दिन की रात्रि में परमेश्वर का बड़ा दिन का उपहार लेना चाहता हूँ, परमेश्वर का सच्चा बड़े दिन का उपहार। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। छोटी लड़की, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर वहाँ युवा महिला को आशीष दे। हाँ, क्या कुछ और है जो चाहते हैं कि प्रार्थना में स्मरण किया जाए? प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई। कोई और प्रभु का मार्ग ले लेगा? मैं आपको कभी भी गंदे पैरों के साथ बैठा हुआ नहीं देखूंगा, या फिर मैं कभी नहीं खड़ा होऊंगा। मैं उनके साथ जुड़ूंगा, मैं सीधा परमेश्वर के राज में आऊंगा, मैं उन ठुकराए हुओं में से एक होऊंगा। प्रभु मेरे संग रहें, आइए आज रात्रि मेरे साथ घर चलें, मैं आपके नाम पर से सारी धूल धो दूंगा। प्रभु आपने मेरे पाप धो दिए, मैं जीवन को जीऊं, ना कि जैसे अब मैं कर रहा हूं। मैं आपका गंदा कर रहा हूं, हर दिन मैं आपको गंदा कर रहा हूं, आपके ऊपर और डाल रहा हूं। प्रभु आज रात्रि मुझे अपने प्रायश्चित के आंसुओं के साथ जाने दें। मैं नम्रता के साथ क्रूस के कदमों पर आता हूं कि आपको अपना बचाने वाला स्वीकार करूं। क्या कोई और है? इसके पहले हम प्रार्थना करें, बस अपना हाथ उठाएं। ठीक है, अमूल्य प्रभु, आज रात्रि हम आपके ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्त्रियों को लाते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, संभव है वे भी नीचे देख सकें। उनमें से कुछ युवा लड़कियां उठती हुई आयु में जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, उनका अर्थ है प्रभु, वे नहीं चाहते कि वे संसार के साथ दोषी ठहरें, वे आपको अब स्वीकार करना चाहते हैं। इस बड़दिन के समय परमेश्वर के बंडल में देखें और अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु अब इसे प्रदान करें, आप उनके पापों की क्षमा को खोल दें, कि आप उनके लिए दाऊद के घराने का सोता खोल देंगे, जो कि पाप और अशुद्धता के लिए खुला है, जहां पापी उसमें डूबकर अपने सारे पाप के दाग धो लेता है। इसे प्रदान करें प्रभु, इनके साथ घर जाएं और प्रभु आज रात्रि इनके साथ रहें, उनका जीवन बना दें प्रभु, जो ये होना चाहिए इसे प्रदान करें। हमारे मध्य में बीमारों और अपाहिजों को चंगा करें, आप निसहाय के सहायक प्रभु, आप वो हैं, आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ दूसरे नहीं कर सकते। आप उपस्थित अनुग्रह हैं, आप परमेश्वर का उपहार हैं, और हम नम्रता से आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम आज के तारे का अनुकरण करते हैं, हम ज्योति का अनुकरण करते हैं, जब तक ये हमें सिद्ध ज्योति तक न पहुँचा दे। परमेश्वर का अनंत जीवन का उपहार पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा इसे ग्रहण करें प्रभु, मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में उनके प्राणों को आज रात्रि ले लें और उन्हें कैलवरी के लाल लहू में धो दें, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु मेरे संग रहे आराम के लिए असफल, जीवन में मृत्यु में ओ प्रभु मेरे संग रहे। क्या आप उसे पूरे हृदय से प्रेम करते हैं? फिर एक बार पुराने समय के लिए, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझे प्रेम किया। अब हर कोई मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो हम अपने हाथ उसकी ओर उठाएं और मेरे उद्धार को खरीदा कैलवरी के पेड़ पर। मैं चाहता हूँ कि सामने की ओर किसी से हाथ मिलाएं और पीछे और अब अपने बराबर में। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा कैलवरी के। वे सब जिन्होंने परमेश्वर का बड़े दिन का उपहार स्वीकार किया है, अब अपने हाथ उठाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा कलवरी के पेड़ पर। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं? ठीक है, अब हम जबकि खड़े हैं, यीशु का नाम अपने साथ लें, दुख और आहों का बालक, ये आपको आनंद और आराम देगा, जहाँ भी जाएं इसे साथ ले जाएं। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, ओ कितना मीठा, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग का आनंद। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, पृथ्वी का आशा, स्वर्ग का आनंद। अब धीरे,
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptation, what do you do when temptations gather? There, just breathe that holy name in prayer.
यीशु का नाम अपने साथ ले, हर फंदे से एक बचाव के समान। जब परीक्षाएं आती हैं, आप क्या करते हैं? उस पवित्र नाम को प्रार्थना में ले। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, ओ कितना मीठा, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग का आनंद। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग का आनंद। यीशु के नाम पर हम अपने सिरों को झुकाएं और गाएं, उसके कदमों पर गिरकर दंडवत करें। राजाओं का राजा स्वर्ग में हम उसको ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद।